गोलोक एक्सप्रेस के स्पिरिचुअल गपशप पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। वेलकम टू दिस गोलोक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरे हरी बोल एवरीवन, एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलोक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे साथ गोलोक एक्सप्रेस के साथ जो इतने सारे डिवोटीज जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों को हम कभी मिले भी नहीं होते, फिजिकली भी नहीं मिले होते। इनफैक्ट अब पॉडकास्ट के माध्यम से हम कई बार सिर्फ आवाज के माध्यम से ही एक दूसरे को जानते हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि ये पूरी की पूरी जो भी हमारे साथ गोलोक एक्सप्रेस में जुड़े हैं, ये पूरी की पूरी एक गोलोक एक्सप्रेस फैमिली है। और हम जुड़े कैसे हैं, हम इस बात को बिल्कुल अपने अंदर से मानते हैं कि ये एक ईश्वरीय व्यवस्था है। कई बार हमारी फैमिली मेंबर्स के जीवन में कुछ कठिन सिचुएशंस आ जाती है, कठिन टाइम आ जाता है, और एक ऐसा ही कठिन टाइम बहुत ही प्यारे डिवोटी हमारे साथ जुड़े हैं, पूजा जी और प्रियंका जी, ये सिस्टर्स हैं। आप इनको रिव्यूज के टाइम पे सुनते हैं, इनके भजन सुनते हैं आप, इनके जीवन में आया है। इनके फादर ही हैज पास्ड अवे, और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सबके साथ जो भी हमें सुन रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे अभी लाइव हैं या फिर आप हमें पॉडकास्ट के माध्यम से सुन रहे हैं, जरूर जो डिपार्टेड सोल है कि श्री हरि उनको अपनी शरण में लें, उनके लिए एक माला करें, अगर माला नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको अपनी प्रेज में जरूर रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है लास्ट वीक हमने चैप्टर 17 कंप्लीट किया था, और कल से हम एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता का, चैप्टर 18 अध्याय 18। हमने हमेशा सुना होता है कि 18वां अध्याय तो कुछ भी ना पढ़ो, तो एटलीस्ट 18वां अध्याय भगवत गीता का जरूर पढ़ना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने इतनी ही बात सुनी होती है, हमें ये भी नहीं पता होता कि भगवान 18वें अध्याय में बता क्या रहे हैं। तो कल से जो है हम चैप्टर 18 श्रीमद् भगवद गीता का स्टार्ट करने वाले हैं, और हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये जो पूरा चैप्टर 18 है, इस सत्संग को, ये जो आने वाले कुछ सत्संग होंगे जिसमें हम चैप्टर 18 में गहराई पे चर्चा करेंगे, निखिल जी खुद लीड करेंगे। तो थैंक यू निखिल जी हमारे सत्संग को, स्पेशली इस चैप्टर 18 को लीड करने के लिए। और जो आज का टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है, देखिए लास्ट वीक एक हमने टॉपिक किया था जैसा अन्न वैसा मन, उसमें हमने जो मेन बात समझी थी कि जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा ही हमारी मन की स्थिति बन जाती है। हम सब लोग जो दिन में मिनिमम 3 बार खाना खाते हैं, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ अवर डेली रूटीन, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम उसको भी कैसे डिवोशन बना सकते हैं और उसका कितना बड़ा रोल है। हमने तीनों गुण, प्रकृति के 3 गुण पढ़े, हमने समझा कि तामसिक क्या होता है, राजसिक क्या होता है, सात्विक क्या होता है, और हमें अपनी बुद्धि जो है वो तामसिक और राजसिक से अब सात्विक की तरफ लेके जानी है, लेकिन ऐसा करने के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है भोजन का। तो हमने ये समझा था कि अगर हम सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारी बुद्धि भी सात्विक होगी, और उसके बाद फिर भगवान हमारी बुद्धि में बैठेंगे और हम अपने आप को दिव्य स्थिति की तरफ ले जा सकते हैं। इसी टॉपिक का जो सेकेंड पार्ट है वो है भोग, कि भोग का अर्थ क्या होता है, भोग का महत्व क्या होता है, उसके ऊपर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। निखिल जी हमें उस भोग के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। और देखिए, जैसा एक हम बचपन में देखते थे कि हमारे घरों में, इनफैक्ट जब हम जो लोग इंडिया से हैं सबने देखा होता है कि जो दादी जी होती थी, दादाजी होते थे, घर में कुछ भी बनता था तो सबसे पहले भगवान को भोग लगता था, फिर उस खाने को ग्रहण किया जाता था। तो ये जो एक्टिविटी है जो अब आज की जो हमारी, जिसको हम फास्ट पेस्ड लाइफ बोलते हैं, ये हमारी लाइफ से, ये एक्टिविटी शायद से गायब हो गई है। तो आज हम इस टॉपिक पे कि भोग क्या है, इस पे गहराई से चर्चा करेंगे। तो थैंक यू निखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासदी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। बिजी टू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन हो के नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। पहले तो प्रेयर्स फॉर द डिपार्टेड सोल, जरूर मैं भी एक दो माला जरूर उनके लिए करूंगा और फैमिली की स्ट्रेंथ के लिए, और आप सब लोग भी जरूर कीजिएगा। जैसा कि अभी वरुण जी पिछले सत्संग को एक बार समराइज करके रिवाइज कर रहे थे आपके साथ, तो अब हमें समझना है कि सात्विक आहार तक तो अच्छी बात है, लेकिन सात्विक से भी बढ़िया आहार होता है दिव्य। क्योंकि जब भी हम भगवान को ऑफर कर देते हैं तो वो सात्विक नहीं रहता, फिर भगवान की ब्लेसिंग जब किसी चीज में आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। तो भोग का अर्थ क्या होता है, सिंपल शब्दों में योग, उपयोग करना, यूज करना, है ना, टू इंजॉय। ठीक है, तो अभी हम मटेरियल लाइफ में एंट्रैप्ड हैं, तो हम किसके प्लेजर के लिए कार्य करते हैं? जब भी हम सोचते हैं कि मेरे को नौकरी मिल जाए, मैं शादी कर लूं, मेरे बच्चे हों, मैं घर खरीदूं, मैं कार खरीदूं, तो हम किसके प्लेजर के लिए सोच रहे होते हैं हमेशा, है ना? क्या हम भगवान के प्लेजर के लिए सोचते हैं या हम अपने प्लेजर के लिए सोचते हैं? क्या लगता है आप सबको, जो भी हम डिसीजन लेते हैं लाइफ में हम किसके प्लेजर के लिए सोचते हैं? नीचे लिख के बताना है आप। ठीक है, हम अपने प्लेजर के लिए सोचते हैं, और वो जो अपना प्लेजर होता है उसमें हमें अज्ञानता में क्या लगता है कि मैं एक शरीर हूं, तो हम अब किसके प्लेजर के लिए सोच रहे होते हैं? इंद्रियों के लिए और मन के लिए। ठीक है, तो हम किसको भोग लगा रहे हैं फिर? जैसे आपने सोचा मेरे को दिल को ये वाली कार अच्छी लगती है, और आपने वो कार खरीद ली। ठीक है, तो आपने वो कार का भोग किसको लगाया? अपने मन को लगाया, अपनी इंद्रियों को लगाया। ठीक है, अक्सर हमने सोचा सुना है कि भाई भोग शब्द आते ही तो खाने की बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भोग का पहले डीपर मीनिंग समझना है आप। मटेरियल लाइफ में हम भोगी बने हुए हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में हमें बनना क्या है? स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए हमें बनना क्या है? हमें योगी बनना है। असली में भोगता कौन है, इंजॉयर कौन है? भागवत गीता से क्या समझ रहे हैं हम, असली में इंजॉयर कौन है, सुप्रीम इंजॉयर कौन है? जैसे पेड़ है तो पानी किसको मिलना चाहिए, जड़ों को पानी मिलना चाहिए या पत्तों को? जड़ों को पानी मिल जाएगा तो पत्तों को ऑटोमेटिकली पानी मिल जाता है। तो इस ब्रह्मांड की जड़ें कौन है? वही भगवान है, राइट? वही भगवान है। तो भोगता वो है, परम भोगता मतलब इंजॉयर वो है, लेकिन हम अपने अज्ञान के कारण ये सोचते हैं कि हम भगवान को भुला के खुद ही को, अपनी इंद्रियों को और मन के मुताबिक कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और फिर हम क्या हो जाएंगे, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे और हम खुश हो जाएंगे। इसीलिए वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग क्या दिख रहे हैं हमें, वो सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंसेस और माइंड के लिए जब काम करते हैं, तो अल्टीमेटली हमें मिलता क्या है इन द एंड, सेटिस्फेक्शन या फिर टेम्पररी हैप्पीनेस मिलती है, और फिर उसके बाद हम दुखी हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और असंतोष में जीवन जीते हैं। तो पूरे की पूरी जो भगवद गीता की टीचिंग है वो हमें भोगी से योगी बना रही है। ठीक है, अभी तक जो हमने एक्शन लिए हैं वो हमेशा हम जो भी करते हैं वो अपनी इंद्रियों और मन के प्लेजर के लिए कर रहे हैं, यानी कि हम इंद्रियों और मन को भोग लगा रहे हैं। ठीक है, अब हमने भोग लगाना किसको है? हमने प्रभु की दिव्य इंद्रियों को भोग लगाना है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। फिर प्रभु की जब ब्लेसिंग उस चीज में पड़ जाएंगी तो वो चीज क्या बन जाएगी आपके लिए, चाहे वो खाना हो या कोई चीज हो, वो क्या बन जाएगा? जब भगवान की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं तो वो चीज क्या बन जाती है, या वो खाना क्या बन जाता है? फिर वो प्रसाद बन जाता है ना? तो कई बार आम भाषा में लोग कहते हैं हम भगवान को प्रसाद लगा रहे हैं। नहीं, आप भगवान के लिए प्रसाद नहीं बना रहे हो, ना आप भगवान को प्रसाद लगा रहे हो, आप भगवान के लिए भोग बनाते हो, भगवान को अर्पित करते हो, और भगवान को अर्पित करने के बाद, प्रेयर्स करने के बाद, जब उसको ब्लेस्ड फूड जब वो बन जाता है तो वो चीज प्रसाद बन जाती है, चाहे वो फूड हो या कोई और चीज हो। क्या हमें खाली खाने का ही भोग लगाना चाहिए या हर एक चीज का भोग लगाना चाहिए? देखिए, हमें जीवन ही ऐसे जीना है, चाहे हमारे कर्म हो, चाहे आपने मोबाइल फोन खरीदा, चाहे आपने कार खरीदी, चाहे आपके घर में सब्जियां आ रही हो। होल कॉन्सेप्ट इज कि हमारे मन को जो आदत पड़ी हुई है संसार में घूमने की, अब उसको रीट्रेन करना है हमने कि हर एक चीज देने वाला कौन है हमें, हर एक चीज देने वाले कौन है, प्रभु है, तो पहले प्रभु को अर्पित करना है, ठीक है, प्रभु को अर्पित करके प्रभु के भोग के लिए लगाना है, प्रभु को भोग लगेगा, प्रभु से हम आशीर्वाद मांगेंगे, थोड़ी सी चैंटिंग करेंगे, प्रभु हमें इस पर्टिकुलर चीज को आपकी कृपा से ही हम ये ले पाए, आप इसको ब्लेस कीजिए ताकि हम इसको इसका सदुपयोग कर सकें और सही दिशा में इसको इस्तेमाल कर सकें, है ना, और हमेशा आपकी भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते रहें। सिंपल सिंपल प्रेयर्स करके, आपने मोबाइल फोन लिया, जैसे मैंने मोबाइल फोन खरीदा, मैं मंदिर में गया, माथा टेका, भगवान के चरणों में मोबाइल फोन रखा, प्रभु ये आपकी कृपा से मैं ले पाया हूं, लेकिन प्रभु ऐसी सद्बुद्धि भी देना कि ये आपकी सेवा में ही लगाऊं, है ना। तो उसके बाद थोड़ी देर चैंटिंग की, 2-4 मिनट के बाद वो मोबाइल फोन मैंने जब यूज करना शुरू किया, तो अब क्या मैं मोबाइल फोन का भोग कर रहा हूं या मोबाइल फोन अब मेरे लिए प्रसाद बन गया है, है ना। अब मोबाइल फोन क्या बन गया है, प्रसाद बन गया है। तो आपने प्रयास करना है कि आपने लाइफ में जो भी चीज है ना, आप जो भी ले रहे हो, मंदिर में जाओ, अपने घर में, हमारे वैदिक परिवारों में घर में छोटा सा मंदिर तो होता ही है, थोड़ा सा फोटो लगी होती है भगवान की, या छोटी सी कोई लड्डू गोपाल होते हैं वहां पे, माथा टेको और थैंक यू करो भगवान को, थोड़ी सी चैंटिंग कर लो भगवान से, है ना, उनको थैंक यू करो कि आपकी कृपा से हमें ये मिला है। अभी देखिए फादर मदर को भी कितना अच्छा लगेगा अगर बच्चे आके उनको थैंक यू करें और फिर चीजों का इस्तेमाल करें, है ना। तो भोगी से योगी बनने का बड़ा सरल तरीका है कि हम भोग लगा के ही हर एक चीज को ग्रहण करें प्रसाद के रूप में। योग का मतलब या भक्ति का मतलब क्या है सिंपल भाषा में, कि हम हर एक चीज में प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रेम करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लाइफ जीते हैं। और भोगी बनने का मतलब क्या है कि हम बस अपने प्लेजर के लिए ही जीवन जिए जा रहे हैं, ठीक है। अब भोग लगाने से अल्टीमेटली क्या क्या फायदे हो गए हमें, देखिए पहले हमें संसारिक जीवन में रहते रहते भगवान याद आते हैं नहीं आते, हम भगवान को भूल चुके हैं। और भक्ति का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, भगवान का स्मरण को बढ़ाना है, आइडियली हो सके तो 24 घंटे पे तो हम एक दिन में पहुंच ही पाएंगे। अब आप दिन में ये बताओ कि खाना कितनी बार खाते हो, कुछ खाते हो, कुछ पीते हो, पानी पीते हो, खाना खाते हो, कोई चीज नहीं खरीदते हो, घर से शॉप करके शॉपिंग लेके करके आते हो, क्या हो सकता है कि ऐसा 15-20 बार हमने किया टोटल दिन में, चाहे स्नैक खाया या हमने पानी पिया, हो सकता है ऐसा तकरीबन हो ही जाता होगा 15-20 बार। अगर हमने आदत डाल दी कि हमने जो भी खाना है पहले हमने भगवान को अर्पित करना है, घर में है तो प्रॉपर मंदिर में जाके करो, नहीं हो पा रहा तो कम से कम वहां 30 सेकेंड 1 मिनट रुक के प्रेयर्स करनी है, हरे कृष्ण 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 हरे रे, हरे राम 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 रे। आप पानी पी रहे हो फॉर एग्जाम्पल, पानी पीने से पहले रुकिए, हरे कृष्ण 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 हरे राम रे राम 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 रे, प्रभु ये आपके चरणों में स्वीकार कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, हमें शुद्ध भक्ति देना, प्रभु हमारे साथ जुड़े रहिए, हम कभी माया में ना फंसे, हम आपके सेवक बने, अपनी तरह से सिंपल सिंपल प्रेयर्स की। और उसके बाद आपने वो जो पानी है वो प्रसाद बन गया आपके लिए, ग्रहण कर लिया आपने। तो आप देखिए कि अगर आप ऐसे एक्टिविटी खुद करोगे तो आपका स्मरण कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। जो डिवोटीज ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो ये फील कर रहे हैं कि उनका स्मरण बढ़ रहा है भगवान का, याद आती है भगवान की, क्योंकि हमने क्या डाल दिया, एक हैबिट पड़ गई हमें कि हर बार खाने से पहले रुकना है, हमने कुछ भी मुंह में डालना है, हमने कोई नई चीज की तो हमने भगवान को थैंक यू करना है, आपका स्मरण बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, भगवद गीता में भगवान ने chapter 3:13 में कहा कि भाई मेरे जो भक्त है वो सारे पापों से मुक्त क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मुझे अर्पित करने के बाद ही वो यज्ञ रूप में भोजन को अर्पित करके ही वो प्रसाद रूप में ही ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको पाप नहीं लगते। अदरवाइज आप कुछ भी ग्रहण कर रहे हो ना, तो जब इंसान, जैसे मैंने एग्जांपल दिया उस दिन आपको कि एक बेटा है वो गया अपने फादर की पॉकेट से पैसे निकाले और जाके कुछ भी खरीद लिया उसने, पापा को पता नहीं है, वैसे ही करता रहता है। दूसरे केस में जो बच्चा है वो फादर से पूछ के लेता है परमिशन से, तो कौन सी वाली चीज को ज्यादा अच्छा माना जाएगा, फादर मदर किसको अच्छा मानेंगे, जो जो बच्चा पूछ के लेता है परमिशन लेके या बिना पूछे ही ले जाता है, है ना। तो देखिए वैसे तो हम यूज तो कर ही रहे हैं चीजें, हमें सब कुछ कहाँ से मिला है, सब भगवान दे रहे हैं हमें, ये में बात करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, हाथ हिलाने की शक्ति, है ना, सब कुछ तो भगवान से मिल रहा है हमें, ठीक है। तो अगर हम ये थैंकफुलनेस का भाव लाएंगे, स्मरण बढ़ेगा, पापों से बचे रहेंगे, पाप हुआ ना, अगर हमने जिसने हमें सब कुछ दिया उसको थैंक यू ही नहीं किया और हमने भोगना शुरू कर दिया तो हमारा पाप हो रहा है। तो बिना कुछ किए हुए ही आप दिन भर पाप कर ही जा रहे हो। आपको लग रहा है आप अच्छे काम करते हो लेकिन आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि हम ऐसे खाना भी खाते हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं। तो कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हम पाप के हकदारी बनते जा रहे हैं, बिकॉज हम परम पिता परमेश्वर को शुक्राना नहीं दे रहे, थैंकफुल नहीं कर रहे, हम हो रहे थैंकफुल नहीं हो रहे, ग्रेटफुल नहीं हो रहे। ठीक है, तो इससे प्रसाद दिव्य होता है और मुक्ति जो है या दिव्य स्तर जो है वो क्या सात्विक गुण है, राजसिक है या तामसिक है, या तीनों गुणों से ऊपर है। ठीक है, दिव्य स्तर जो है वो तीनों स्तर तीनों गुणों से ऊपर है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्र भी से ऊपर जाना है हमें तो दिव्य स्तर पे जाना पड़ेगा। तो प्रसाद क्या होता है, बिकॉज उसमें भगवान की ब्लेसिंग्स आ गई और भगवान स्वयं दिव्य हैं, इसलिए प्रसाद ग्रहण करने से हम पापों से मुक्त हो रहे हैं और हम दिव्य स्तर पे जा रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, अब देखिए हम सब गृहस्थ आश्रम में डिवोशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम में माता और पिता या दादाजी या दादी जी का क्या रोल है, क्या अपने आप को ही डिवोशन में आगे बढ़ाना या आसपास के माहौल को भक्तिमय करना ताकि बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिल सके, क्या रोल है हमारा, क्या फादर और मदर को गुरु कहा जाता है या फैमिली के सीनियर्स को गुरु गुरु का दर्जा दिया है भगवान ने शास्त्रों में कि वो बड़े हैं उनको गाइड करना चाहिए, है ना। तो अब अगर घर में एक एक्टिविटी बनी हुई है, रिचुअल सब फॉलो करते हैं कि भाई भोग लगना है, तो क्या बड़ी आसानी से हम बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम इसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। चलो बेटा जाओ भगवान को भोग लगाओ, तो बच्चे आपसे पूछेंगे क्यों लगाएं, फिर आप उनको रीजनिंग दे, देखो तो सब कुछ हमें भगवान ने दिया है। और आप उनके साथ बैठोगे, कभी आप उनके साथ बैठो, थोड़ा सा माथा टेको, थोड़ी सी चैंटिंग करो, हो सके तो एक माला कर लो वहां पे, तो बच्चों को भी क्या मिलते हैं, प्यारे प्यारे संस्कार देने में भोग जैसी एक्टिविटीज बहुत सहायक रहती हैं। और आज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से हमारा देश, जैसे वरुण जी कह भी रहे थे कि हमने दादा दादी के समय में तो देखा कि हर एक घर में भोग लगा था लगा करता था, लेकिन आज इस वर्ल्ड में इंडिया में आपको क्या लग रहा है कितने घरों में भोग लग रहा है आपके हिसाब से, या ये जो एक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होती जा रही है, या कह सकते हो कि बड़े कम घरों में ही रह गया ये कल्चर, है ना। तो ये बहुत ही कम घरों में रह गया कल्चर, है ना। तो फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, तो एक फैमिली में अगर बड़े एक एक्टिविटी करते होंगे, बच्चे आचरण से सीखते हैं, तो बच्चों को भी लगेगा ये एक्टिविटी करनी चाहिए, तो उनको भी संस्कार पड़ रहे हैं, उनको भी रियलाइजेशन आ रही है कि भाई भगवान को थैंक यू करना चाहिए, और उसी बहाने यंग एज से ही वो भगवान को स्मरण करना सीखते हैं, ये भी इसका फायदा हुआ, है ना। अब भोग लगाए कैसे, आप बोलोगे भैया मैं अमेरिका में रहता हूँ, मेरे घर में भी स्ट्रक्चर नहीं बना, बस मेरी जॉब की टाइमिंग्स बड़ी ऑड है, और अभी निखिल जी हमें तो आदत पड़ गई है कि हम ईटिंग आउट ही ज्यादा करते हैं, अब एकदम तो हम छोड़ नहीं पाएंगे। तो हमने तो सुना है कि भोग लगाने के लिए भैया बिल्कुल शुद्ध वातावरण होना चाहिए और प्याज लहसुन भी नहीं खाएं, हम कहाँ से शुरुआत करें, हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए भोग के दो पार्ट्स हैं, पहला तो इंटरनल फिर एक एक्सटर्नल। इंटरनल पार्ट सभी को करना चाहिए। इंटरनल पार्ट क्या है, भगवान को याद करना और थैंक यू करना और थोड़ा सा नाम जाप करना, है ना। नाम जाप करके प्रभु को थैंक यू किया, प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, प्रभु जो भी हम ये खा रहे हैं प्लीज इसको अपनी ब्लेसिंग्स देना ताकि हम प्रसाद के रूप में इसमें इसको ग्रहण कर सके। ठीक है, ये जो आप प्रेयर्स कर रहे हो इंटरनल लेवल पे, प्रभु को याद कर रहे हो, ये सभी को कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप एक्सटर्नल सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो वो आपके टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के और घर के वातावरण पे डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही डिवोशन इकट्ठे कर रहे हो और दोनों को ही बहुत जोश है कि हमने डिवोशन में आगे बढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप धीरे धीरे प्रॉपर तरह से भोग लगाना शुरू कर सकते हैं। आपके घर में एक मंदिर बनाइए, नहीं बनाया है तो ठीक है, थोड़ा छोटा ज्यादा नहीं तो बड़ा छोटा सा भगवान की फोटो लगा लीजिए। जब भी आप खाना बना रहे हो भगवान के लिए अलग बर्तन रखिए। ठीक है, जैसे आपके घर में अगर चीफ मिनिस्टर आएगा तो आप सबसे सड़ी हुई क्रॉकरी निकालोगे या बेस्ट निकालोगे, प्रधानमंत्री आएंगे आपके घर में तो क्या करोगे आप। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री छोड़िए, वरुण जी को ही आप इनवाइट कर लेते हैं डिनर के लिए, तो क्या आप अपनी वर्स्ट क्रॉकरी निकालेंगे या अपने घर की बेस्ट क्रॉकरी निकालेंगे, आप बेस्ट करोगे ना, अपने घर पे कोई गेस्ट आता है तो यहाँ तो आप परम पिता परमेश्वर को ऑफर कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल यूटेंसिल्स भगवान के लिए लीजिए। जो भी आप बनाते हो घर में शुद्ध शाकाहारी, ठीक है, अगर आप अब उस स्टेज पे आ गए हो हस्बैंड वाइफ दोनों की, नहीं हमें लगता है आपको कि नहीं भाई हमें प्याज लहसुन को अब ग्रहण नहीं करना है क्योंकि रिकमेंडेड है ये, इसमें भी राजसिक और तामसिक गुण होते हैं, भगवान को भोग लगाते हुए प्याज लहसुन नहीं डाला जाता, आप दोनों कन्विंस्ड हो हस्बैंड वाइफ कि आपको नहीं करना, तो आप प्याज लहसुन छोड़ के हर एक वेजिटेरियन चीज का प्रभु की थाली में डालिए, भगवान का भजन करते हुए भोग बनाइए प्रभु को, और हो सके तो घर में तुलसी का एक पौधा लगा लीजिए, तुलसी हरि प्रिया है, तुलसी का पत्ता उसमें डालिए, भगवान के मंदिर में जाइए, माथा टेकिए, प्रेयर्स कीजिए, थोड़ी सी चैंटिंग कीजिए, है ना, भगवान प्लीज एक्सेप्ट अ हम्बल ऑफरिंग एंड अलाउ अस टू ऑनर योर प्रसाद, है ना, ये हमारी ऑफरिंग को एक्सेप्ट करो प्रभु, कोई भी भाषा में बोलिए, पंजाबी में, हिंदी में, गुजराती में, जो भी आपकी लैंग्वेज है, कि प्रभु ये आपका है, आपको हम अर्पित करते हैं, आप ही की खुशी के लिए हमने बनाया है, इसको आप ब्लेस करें, है ना, ताकि हम आपकी भक्ति में भी आगे बढ़े और आपके प्रसाद रूप में ही हम हर एक चीज को ग्रहण करें। थोड़ी देर जाप कीजिए और फिर वो सारा जो फूड है अब वो प्रसाद बन गया, उसको सब में मिक्स कर दीजिए अपने फूड में, ठीक है, वो सारा क्या बन जाएगा आपके लिए, प्रसाद बन जाएगा, तो उस तरह से आप ग्रहण कीजिए। जब आप बना भी रहे हो भोजन तो फालतू की बातें मत सोचते रहो, टेंशन लेके भजन लगाइए, भजन गाइए, भगवान को स्मरण करते हुए बनाइए, है ना, तो ये होगी आइडियल सिचुएशन अगर आपकी घर की सिचुएशन वैसे अलाव करती है। अब आपका अगला क्वेश्चन, लेकिन नहीं जी मैं तो करना चाहती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी घर में, और मेरे, मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, वहां तो प्याज लहसुन सब खाते हैं, तो मैं क्या करूं, क्या मैं भोग नहीं लगा सकती? नहीं, आप भी लगा सकते हो, आप भगवान को याद तो कर ही सकते हो, आप याद करते करते भजन गाते हुए भोग, भजन गाते हुए खाना तो बना ही सकते हो, और क्या आप हर एक चीज जो घर में बनाते हो उसमें प्याज लहसुन होता ही है? क्या आप घर में दही नहीं खाते? क्या आपके घर में रोटी नहीं बनती? ठीक है, क्या आपके घर में ड्राई फ्रूट्स नहीं आते? क्या आपके घर में केला संतरा जैसे फ्रूट्स नहीं आते? ठीक है, आपके घर में मिश्री नहीं होती, दूध नहीं होता, आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें प्याज लहसुन नहीं होता, तो आप वहां से शुरुआत कर लीजिए, और जो बाकी भी बना रहे हो उसको भी प्रभु को याद करके बनाइए, प्रभु को भजन गाइए, और प्रभु से ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे घर में अभी ऐसा वातावरण नहीं है, आप भक्तिमय एनवायरमेंट बनाओ ताकि सबका दिल करे कि वो आपकी तरफ बढ़े, ताकि मैं आने वाले समय और बेटर से आपके लिए भोग बना सकूं। प्रेयर्स करो, कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है, और आपके घर में अगर सिचुएशन बहुत ही अनफेवरेबल है, आप भजन भी नहीं गा सकते, आपके आसपास लोग होते हैं, आपको लगता है थोड़ी शर्म आती है, तो आप मन ही मन गुनगुनाइए प्रभु का नाम। और क्या ऐसा होता है कि आप हर समय जब किचन में हो तो हर समय कोई आपको कैमरा लगा के देख रहा है? बड़ा सारा टाइम आपका प्राइवेट भी होता है, भगवान को याद करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट काम है, प्रभु को याद करके करते वो भोजन बनाइए, प्रभु के प्लेजर के लिए बनाइए, और अगर जिन चीजों में प्याज लहसुन नहीं है वो तो भगवान को भोग लगाइए। और फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, गाड़ी लेते हो, भगवान की चाबी गाड़ी की रखिए और प्रेयर्स कीजिए, प्रभु आपकी कृपा से हमें ये मिल पाया है, उसका भी भोग लग जाएगा, उसमें तो प्याज लहसुन नहीं है ना। हमारे साथ क्या होता है ना, हमारी चीज में वो सोचते हैं कि जो आप कर नहीं सकते आप वो सोचना शुरू कर दोगे, लेकिन आप बहुत सारी चीजें कर भी तो सकते हो ना, आप पानी पीते हो, क्या उसमें प्याज और लहसुन डालते हो आप? वरुण जी आपने सुना है किसी से कि प्याज और लहसुन डाल के पानी पी रहे हैं वो, या
नहीं
पानी
नहीं
ऐसे
जी,
ही
कभी
पीते
भी नहीं पानी नहीं
इतनी बार पानी पीते हैं हम? आपने कभी सुना है कि कोई संतरा खा रहा हो उसके अंदर प्याज और लहसुन का तड़का डाल दे वो, राइट? सुना है आपने? स्ट्रॉबेरी खा रहा हो, तरबूज खा रहा हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप करते हो ग्रहण अपने जीवन में, उसमें प्याज लहसुन नहीं होता, अब वहां से शुरुआत कीजिए, है ना। अच्छा अब अगला पॉइंट, अब आप बोलोगे कि निखिल जी पर हम तो कॉर्पोरेट में काम करते हैं और वहां पे कई बार मीटिंग्स में भी हमें खाना पड़ जाता है और वर्क प्लेस से रिलेटेड होता है, फिर हम वहां कैसे भोग लगाएंगे, वहां तो मंदिर भी नहीं होते। क्या भगवान मंदिर में ही होते हैं? आपको कितना समझ आया अभी तक भागवत गीता? क्या भगवान सर्वव्यापी हैं और हर जगह होते हैं? वरुण जी क्या समझ आया आपको, मंदिर में ही होते हैं भगवान या हर जगह होते हैं?
भगवान
बताओ आपको
कण-कण
भगवान,
में है, हर जगह है भगवान।
तो क्या हम कॉर्पोरेट मीटिंग में भी, अगर मीटिंग के बाद वहां पे सब फूड ले रहे हैं, तो क्या वहां पे भी थोड़ी सात्विक ऑप्शंस होती हैं, या सब कुछ ही मीट ही बनाते हैं, सलाद भी होता है वहां, थोड़ा बेसिक वेजिटेरियन होता है या नहीं होता? कैन वी चूज? क्या आसपास हमारे सब लोग अगर तड़क भड़क वाला खाना खा रहे हैं तो क्या हमें भी वो मजबूर करेंगे कि वही खाना खाओ, या हम भी वी कैन चूज स्लाइटली सात्विक वहां का आहार जो वहां के हिसाब से ऑप्शन होती है, सिंपल दाल चावल दही थोड़ा सलाद, क्या हम चूज कर सकते हैं? और क्या वो खाने से पहले आप प्रार्थना कर सकते हो भगवान से? आपको लगता है कि आप हाथ जोड़ के अगर प्रार्थना करोगे सब आपको देखेंगे, आपको थोड़ा ऑड लगता है, अभी नए नए नवसाधक हो आप, बड़े जल्दी आप विचलित हो जाते हो, तो आप क्या मन ही मन भगवान को याद कर सकते हो, या आपके मन के अंदर भी झांक के सब देख लेंगे। मन ही मन याद कीजिए ना प्रभु को, प्रभु को बोलिए प्रभु मेरी इस सिचुएशन में अभी मैं प्रॉपर भोग तो नहीं लगा पा रहा प्रभु, बट ये मेरे प्लीज जो मैं ये ग्रहण कर रहा हूँ इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना, इस पे अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा प्रभु, है ना, इसको मैं प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करूं प्रभु, थैंक यू कर लीजिए भगवान को। उतना भी कर लोगे तो वो भोग ही हो गया ना, प्रभु को भोग लगा दिया आपने, ठीक है। फिर और क्या हो सकती है सिचुएशंस, क्वेश्चंस आते हैं, अब भाई हम लेडीज हैं हमारा वो टाइम आ जाता है उसमें मेंस्ट्रुएशन होती है, क्या हम उसमें भोग लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। देखिए रियलिटी ये है कि आप हर समय भक्ति कर सकते हो, लेकिन अब सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, आपके घर में माहौल ऐसा बना हुआ है आपको लेडीज को मना किया जाता है कि ऐसे भोग मत लगाओ, ठीक है, क्या आपको झगड़ा कर लेना चाहिए फिर भोग लगाने के लिए, या आप अपने बेटे को या हस्बैंड से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो भोग लगा ले, क्या कर सकते हो आप, समझदारी का काम क्या होगा, उस दिन मत लगाइए अगर आपके घर में थोड़ा सा माहौल वैसा है, वो रोका टोकी होती है, तो क्या कर सकते हो आप भगवान के लिए। देखिए एक होता है ना भगवान और आपकी फीलिंग्स, वो तो कभी रुकनी नहीं चाहिए, बट एक होता है सामाजिक जीवन प्रैक्टिकल लाइफ, उसमें थोड़ा ना आपको अपने घर की सिचुएशंस को देख के चलना पड़ेगा, है ना। अब अगर आपके घर में सबकी सोच ऐसी है कि भाई इस समय भोग नहीं लगाना चाहिए, तो आप भगवान को याद करो, थैंक यू कर लो ऐसे ही, ठीक है, झगड़ो मत उनके साथ। या फिर कहीं बोलते नहीं आप मंदिर में मत जाओ उस दिन भोग लगाने, तो आप कोई बात नहीं आप हस्बैंड को बोल दो, या अपने बेटे को बोल दो, या बेटी को बोल दो बेटा आप चले जाओ, या अपनी मदर इन लॉ से रिक्वेस्ट कर दो उस समय पे भोग लगाओ, कंटिन्यू करो उसको। लेकिन अब आप अमेरिका में रहते हो, आप हस्बैंड वाइफ अकेले हो, ठीक है, आपके घर में कोई नहीं है, कोई रूल नहीं है, आप ही बॉस हो अपने घर के, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपका वो टाइम आ गया है वो वाला, आपको भोग लगाना बंद कर देना चाहिए, या आपको, क्या भगवान को पता है कि आपका वो समय आया है, क्या ऐसी कोई चीज है जो भगवान से छुपती है, भाई सारे सिस्टम भगवान ने ही बनाए हैं ना, तो आप भगवान से क्या छुपा रहे हो, आप ईश्वर से प्यार करते हो ना, ये आपके, देखो एक होता है भगवत धर्म एक होता है कर्म कांड, कर्म कांड में बहुत सारे नियम है, हम आपको यहाँ क्या सिखा रहे हैं, भगवत धर्म ईश्वर से प्रेम, उसमें एक ही नियम है, प्रभु को हमेशा याद रखो पहला नियम, दूसरा नियम एक और है, प्रभु को कभी भूलना नहीं है हमने, पहला नियम प्रभु को याद रखो, दूसरा नियम भगवान को भूलना नहीं है। तो क्या आपको भोग लगा लेना चाहिए फिर, भोग लगाना तो वो नियम है ना जिससे आपका भगवान का स्मरण बढ़ रहा है, तो आप उसको क्यों छोड़ोगे, ठीक है। तो आप अपनी सामाजिक परिस्थिति देख लिया करो, अगर आपके घर का माहौल है तो ऐसे ओपनली कर लो, घर का माहौल नहीं है तो प्राइवेटली कर लो, अपना अंदर से भगवान को याद करते रहो, बट भोग लगना जरूर चाहिए। और क्या खाली खाने का नहीं, हर एक वस्तु का हमें भोग लगाएं, इससे इसको सत्ववृत्ति कहते हैं, धीरे धीरे हमारा तमस और रजस तामसी गुण जिससे हम आलसी होते हैं निंदा करते रहते हैं, हमारा काम जो है वो, हमारा जो मन है वो उल्टे सीधे कामों में चलता है, डिप्रेशन की तरफ जाता है ना, या फिर राजसी गुण जिसमें हमारा जो मन है उसमें कामना ही नहीं खत्म होती, एक डिजायर दूसरी डिजायर तीसरी डिजायर, डिजायर कॉम्पिटिशन, है ना, दिखावा लेने की भावना, ये सब खत्म नहीं होता, इसी से तो हम अशांत है। सत्ववृत्ति होगी जब आप भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करोगे तो आपकी भी सत्ववृत्ति होगी, दिव्यता की तरफ जाओगे, मन शांत रहना शुरू हो जाएगा, आलस कम होगा, डिवोशन में रुचि बढ़ेगी, और तो और जितने घर वाले थे आपके जिनको आप सुधारना चाहते थे आपके बिना बोले ही आपके फैमिली के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी, आप पहले जोर लगाते रह जाते थे कोई बदलता नहीं था, अब आप कोई जोर नहीं लगा रहे हो, चुपचाप भगवान का नाम लेते हो और भोग लगा के सबको प्रसाद खिला देते हो, क्या आपको ढिंडोरा पीटना चाहिए अपने घर में कि मैं आपको भोग लगाने के बाद प्रसाद खिला रही हूं, क्या ऐसा बोलने की जरूरत है आप, या आपका डिपार्टमेंट है आप किचन में काम कर रहे हो, अपना भोग लगाइए सबको प्रसाद खिलाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, फेवरेबल एनवायरमेंट होता है तो थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, नहीं है फेवरेबल एनवायरमेंट तो ज्यादा डिस्कस करने, किसी के लिए वो खाना ही है ना, जिसको नॉलेज नहीं होती तो क्या उसको कोई शक्ल में कोई प्रसाद में और खाने में कोई फर्क दिखेगा, वो तो सबलाइम है ना, सूक्ष्म तौर पे उसके अंदर ब्लेसिंग्स होती है। तो आपके घर में अगर किसी को बुरी आदतें हैं, कोई एंगर इश्यूज हैं, आप मानेंगे नहीं कैसे लोगों के हृदय परिवर्तन हो जाएंगे। आप बच्चों को ना भोग लगा के पानी में, पानी का भोग लगा के उनकी वाटर बॉटल में डाल दो स्कूल जाते हैं तो, ठीक है, बस देखो कैसे उनका बिहेवियर चेंज होता है। या आपके हस्बैंड का आप टिफिन पैक करते हो, भोग लगाइए प्रसाद पैक करके दीजिए उनको, आपको कुछ जोर नहीं लगाना पड़ेगा, उनका जो जो चरित्र है, बात करने का तरीका है, उसमें मिठास आ जाएगी। अगर उनकी कुछ बुरी आदतें थी, जैसे नशे लेते थे वो, या कुछ अलग अलग तरह की आदतें जो आप छुड़वाना चाहते थे, बट आप जब भी उनसे बात करते थे बहस हो जाती थी। अब आप देखिए, भोग लगाइए और प्रसाद प्रसाद दीजिए उनको, प्रेयर्स कीजिए बस, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकती प्रभु, बट आप कर सकते हो, आपके पास ये पावर है, आप इनका हार्ट ट्रांसफॉर्म करो प्रभु, प्लीज इनको सात्विक गुण दो, दिव्यता दो, भक्ति में ये भी आगे बढ़े, इनकी जो बुरी आदतें छूट जाए। प्रेयर्स करते रहो, उन प्रेयर्स के थ्रू, भोग के थ्रू, प्रसाद जब वो ग्रहण करते रहेंगे, हमने हजारों लोगों के जीवन ऐसे बदलते हुए देखे। और आप इतना प्रसाद ग्रहण करते रहोगे ना, तो आप इतना फ्रेश फील करोगे, इतना हैप्पी फील करोगे, ये प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस करना है। और इतना मुश्किल नहीं है, आपने बड़े ज्यादा ना स्ट्रिक्ट नियमों में चक्कर में नहीं फंसना, क्योंकि होता क्या है कि हमने बहुत सारी बातें सुनी होती हैं, फिर हम डर जाते हैं और फिर हमें लगता है बड़ा मुश्किल है, फिर हम करते ही नहीं, है ना। ऐसा सोचिए कि आपके घर में आपके बड़े कोई रह रहे हैं और आपने उनको पहले फूड ऑफर करना है, फिर आपने खाना है। तो वैसे ही सबसे बड़े भगवान है, सब कुछ भगवान से मिला है, हमने हर एक चीज को ग्रहण करने से पहले प्रभु को याद करना है, थैंक यू करना है, थोड़ा सा नाम जाप करना है ना, और प्रेयर्स करनी है प्रभु से कि प्रभु आप हमारी बुद्धि में आ जाओ, हमारी बुद्धि को शुद्ध करो, हमें शुद्ध भक्ति दो, हमारे सारे परिवार में क्या है, आपसी प्रेम आए, हम सब आपके रास्ते में आगे बढ़े। सिंपल प्रेयर्स करो और उसके बाद आप उन चीजों को ग्रहण करो, वो सब प्रसाद बन जाती है। ये सारी सारी बेसिक बेसिक बातें हैं वैदिक सिस्टम की, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बट इतनी इफेक्टिव हैं, इतनी इफेक्टिव हैं कि अगर आप करेंगे तो आप हैरान हो जाओगे कि इतने प्यारे प्यारे चेंजेस आप सबके जीवन में आ रहे हैं, जो आपको अदरवाइज ऐसे लगते थे कि असंभव चीजें थी, वो संभव होना शुरू हो जाएंगे। वरुण जी, क्योंकि टॉपिक तो बहुत लंबा है, बट आज का मुझे थोड़ा सा था कि आई वांटेड टू डू अ समरी फॉर्म ऑफ दिस, बट अगर आपके दिल में कोई हो जो आपको लगता है कि क्वेश्चन भोग से रिलेटेड जो लोगों के दिल में आ जाता है, जो कवर नहीं किया मैंने, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। वरुण जी, हरी रिपोर्ट, कोई ऐसी चीज याद आ रही है आपको?
हरी हरी बोल निखिल जी। ऐसा तो नहीं आपने कवर तो किया है, बट मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं वो या तो यंग हैं, कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं, और आपने टच तो किया उस पॉइंट को, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उस पर आप और अगर इलेबोरेट कर सकते हैं कि इवन तो हम इंटरनली भगवान से प्रेयर करके भोग लगा के भोजन ग्रहण कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि आप ऑफिस में होते हैं, लोग देखते हैं, अगर आपने हाथ भी जोड़ दिए, कई बार हंसते भी हैं, स्पेशली जो आपने पॉइंट टच किया कि यार वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन होती है तो भी लोग देखते हैं, अच्छा तुम वेजिटेरियन खाते हो। और आजकल तो ऐसा हो गया कि जैसे पहले था ना, लोग नॉन वेजिटेरियन को लोग बोलते थे अरे तुम नॉन वेज खाते हो, आजकल ऐसा हो गया अरे तुम वेज खाते हो, ये मैंने खुद फील किया है। तो इस पॉइंट को जो यंगस्टर्स हैं, मैं उसके लिए अगर आप 5-6 मिनट ले सकें निखिल। हरी हरी बोल।
देखिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, देखिए लोगों को तो अभी
बिल्कुल
आप खुश नहीं कर पाओगे, लोगों को अभी खुश नहीं कर पाओगे, लोग तो कुछ भी होगा, लोगों ने कुछ कहना है ना। एक बार शिव जी और पार्वती, शिव जी कहते हैं चलो पार्वती को कि चलो थोड़ा सा हम घूम के आते हैं मृत्यु लोग, तो पार्वती जी को लगता है आज जो शिव जी है मुझे कुछ नई लर्निंग देना चाहते हैं, ऐसे तो नहीं कहते कि मृत्यु लोग चलो, तो वो घूम रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वहां, साथ में नंदी भी होता है ना, तो नंदी साथ में चल रहा होता है और शिव जी पार्वती चल रहे होते हैं, तो वहां पे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, वो अपने गॉसिप करना शुरू करते हैं, पता नहीं कौन से कपड़े पहने हैं उन्होंने, और ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, नंदी साथ में चल रहा है, नंदी मतलब ये बैल भी चल रहा है, इसके ऊपर बैठ ही जाते तो ज्यादा बेटर रहता। तो पार्वती जी को बड़ा हर्ट हो गया कि यार ये ऐसी कमेंट मार रहे हैं हमारे बारे में। फिर वो थोड़ा सा और आगे चले तो शिव जी ने कहा अच्छा अब तुम्हें लग रहा है कि कमेंट मार रहे हैं, तो ऐसा करो तुम बैल पे चढ़ जाओ, मैं वॉक कर लेता हूँ, क्या पता लोग खुशी हो जाएं। तो फिर वो आगे गए, आगे एक और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, उन्होंने भी खुश 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 करने लग शुरू कर दिया, गॉसिप, बोलते पता नहीं कैसी लेडी है ना, इसको बिल्कुल ही अकल नहीं है, हस्बैंड को नीचे चलाया हुआ है और खुद तो बड़े आराम मजे से लूट रही है कमेंट पड़ गया। पार्वती जी बड़े दुखी हो गए, यार ये तो सही बात है, मैंने अपने हस्बैंड की इंसल्ट कर दी है, वो बेचारे चल रहे हैं नीचे और मैं तो बैठी हूँ आराम से, ये तो गलत बात है। तो वो कहती है कि शिव जी आप ऊपर आ जाओ, मैं वॉक करती हूँ। शिव जी बैठ जाते हैं नंदी के ऊपर और जो पार्वती जी हैं वो वॉक कर रहे हैं। फिर आगे जाके एक और ग्रुप ऑफ फ्रेंड मिलता है, वो भी खुश खुश कर रहे हैं उनके बारे में, देखो कैसा पति है, खुद तो आराम से बैठा हुआ और पत्नी को नीचे चलाया हुआ है। अब फिर से पार्वती जी हैं वो दुखी हो जाते हैं, वो कहते हैं आप क्या करें, ऐसा करते हैं हम नंदी को भी उठा लेते हैं ऊपर। तो वो एक बड़ा सा डंडा लेते हैं और एक तरफ से शिव जी और एक तरफ से पार्वती जी नंदी को उठा के चलते हैं, राइट। तो अब बताइए क्या हो गया होगा, लोग खुश हो गए होंगे, राइट। आगे एक और ग्रुप ऑफ फ्रेंड मिलता है, ये कैसे पागल लोग हैं, इनको तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, ऐसा कौन करता है कि बैल को खुद उठा गया हुआ और खुद तरल चल रहे हैं, ऐसा कौन करता है। फिर शिव जी पार्वती को समझाते हैं, देखो पार्वती मैं तुम्हें ये समझाना पड़ता था, संसार में आपसे अगर आप ये सोच के काम करने शुरू कर दोगे कि लोग आपसे खुश हो जाएंगे, लोग किसी से खुश नहीं होते, आपका ध्यान क्या होना चाहिए, ईश्वर को खुश करना, आपका ध्यान ये नहीं होना चाहिए कि आपसे लोग खुश हो जाएं, बिकॉज संसार में आज तक कोई ऐसा नहीं है इंक्लूडिंग भगवान, जब भगवान भी आ जाते हैं तो शिशुपाल होता है, दुर्योधन होता है, शकुनी होता है, कोई नहीं खुश होता भाई, है ना। तो ये वाली अटैचमेंट तो आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आपको डिवोशन में आगे बढ़ना है कि लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ आप थोड़े से इनिशियल लेवल पे आपके लिए मुश्किल है, तो आप थोड़ा सा तरीकों में कैमोफ्लेजिंग जरूर कर सकते हो, पर अगर आप इतने ज्यादा डेलिकेट होके चलोगे, आप ये बताइए जब लोग उल्टे सीधे काम करते हैं वरुण जी, तो वो क्या बहुत ज्यादा छुपते छुपाते करते हैं या बड़ा छाती चौड़ी करके करते हैं जब उल्टे सीधे काम करते हैं,
नहीं,
पार्वती जी
आजकल
भी
वी फील वेरी प्राउड कि हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं।
है ना। तो उल्टे सीधे काम जो लोग कर रहे हैं भाई, वो इतना ज्यादा आगे सीना चौड़ा कर करते हैं, आप क्यों ऐसा डर रहे हो, आप कोई बुरे काम थोड़ी कर रहे हो, आप भगवान के रास्ते में चल रहे हो ना, ये दुनिया का सबसे अच्छा रास्ता है, इतना डर के मत चलिए, अगर आप डरते रहोगे फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे आपको, ठीक है। आपको ये अटैचमेंट छोड़नी है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहें लोग, बिकॉज ये जो अटैचमेंट है ना आपकी, फिर ये प्रगति नहीं करने देगी, ना तो आपकी मटेरियल फील्ड में प्रोग्रेस हो सकती है क्योंकि आप हर्ड मेंटेलिटी में फंसे रहोगे भेड़ चाल में, ना आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस हो सकती है, बिकॉज आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि आपको लोगों को खुश करना है, ठीक है। फिर भी आप क्या कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, देखिए तो आप ये कर सकते हो ना कि जब जितना हो सके, अगर आपको लगता है कि आपका बॉस के साथ आपको पीनी पड़ती है प्रोग्रेस के लिए, तो इस अटैचमेंट को, इस विचारों को छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो बहुत ज्यादा विस्की पीते हैं, वो बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, पहले ये जो आपने अपने अंदर ना बुद्धि में फालतू की बातें घुसा रखी है कि आपकी प्रगति, आपके दोस्तों ने सिखाया यार बॉस के साथ ना पियोगे तभी तरक्की होगी, थोड़ा ना स्टाइल मारने के सिगरेट पी लिया करो, पहले तुम्हें ये, आपको ये ना ये फाते फालतू की जो बातें आपकी बुद्धि में बैठी हुई है, किसी की प्रगति भगवत कृपा पे डिपेंड करती है और उसकी मेहनत पे डिपेंड करती है, वो उसकी फालतू की आदतों से नहीं डिपेंड करती। तो आपने पहले, प्रॉब्लम लोगों में नहीं होती है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने सोचा हुआ है कि हमें ये सब काम करने पड़ेंगे अपनी प्रगति के लिए। क्या आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं वरुण जी, बहुत सारे लोग ऐसा लोग सोचते हैं कि बॉस के साथ पीनी ही पड़ती है तभी तरक्की होती है, या ऐसा करना पड़ेगा हमें स्टाइल मारने के लिए,
नहीं, बिल्कुल बॉस के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जैसा बॉस बोले आफ्टर ऑफिस आज मिलना है तो जाते ही हैं, जो नहीं जाता कई बार उसके लिए बैकफायर हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं। यस
ऐसा आप मानते हो, लेकिन सच ये है कि अगर आप प्रिंसिपली करेक्ट रहोगे और अपनी लाइफ में हार्डवर्क करोगे और भगवान पे भरोसा लेके चलोगे, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक पाएगा। अड़चनें तो आती हैं, ठीक है, जो बॉस के तलवे चाटते हैं क्या उनको अड़चने नहीं आती, उनको भी अड़चने आती, अड़चने तो आना ही है ना, तो जीवन है ना, अड़चने तो आती रहेंगी, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म गेन्स देखने हैं या हमें अल्टीमेट हाईएस्ट पर्पस देखना है, जिंदगी हाईएस्ट पर्पस के बारे में सोचिए, हाईएस्ट पर्पस आपकी लाइफ का ये नहीं है कि आपको एक जॉब में प्रमोशन मिल गई, आपकी हाईएस्ट पर्पस ये है आपको मनुष्य योनि क्यों मिली है आपको, ताकि आप ये समझ पाओ कि आप आत्मा हो और आपको भगवत धाम जाना है और आपको भगवान से प्रेम करना है और आपको उस भूले हुए संबंध को जागृत करना है। आपकी सक्सेस की परिभाषा पहले डिफरेंट होनी पड़ेगी ना, अगर आपकी सक्सेस की परिभाषा कुछ मटेरियल गेन्स हैं, फिर आप मैक्सिमम लोगों की तरह वो शॉर्टकट कोई ढूंढते रहोगे कि कोई जुगाड़ लग जाए और आपकी तरक्की हो जाए, वो कॉन्सेप्ट छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। किसी की सक्सेस नहीं रुकती भाई, अगर आप हार्डवर्किंग हो और आप अपना भगवान पे भरोसा रख के चलते हो ना, तो जस्ट बिकॉज आप ड्रिंक नहीं करते हो या आप नॉनवेज नहीं खाते हो, ये सब आपको बस भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिंदगी में जो ग्रो कर पा रहे हैं, सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, वरुण जी का ही बेस्ट एग्जाम्पल है, वरुण जी विपुल जी, क्या आप ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, वर्ल्ड में ज्यादा लोग पहचानते हैं आज आपको, क्या आप जब मीट खाते थे तब ज्यादा लोग पहचानते थे या अब जब आप सात्विक जीवन जी रहे हो तो ज्यादा लोग पहचानते हैं आपको, रिस्पेक्ट देते हैं वरुण जी, बिल्कुल। क्या लगता है आपको, ज्यादा
नहीं, यू आर
सक्सेसफुल
राइट,
क्यों हो रहे हैं,
बिल्कुल 100% जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, राइट।
है ना? तो पहले हमें अटैचमेंट छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये जो हमारी अटैचमेंट है कि हमें ऐसा करने से ही प्रोग्रेस होती है, वो अटैचमेंट है हमारी, वो भ्रम है, सच ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर अमेरिका जाके मोदी जी वहां पे व्रत रह सकते हैं, साथ में अमेरिका में बड़े बड़े एम्बेसडर्स के साथ और वहां के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हो रही है, साथ में वो गर्म पानी पी रहे हैं कि भाई मेरा आज व्रत है नवरात्रों का, उनको क्यों नहीं टेंशन हो रही है बताओ, वो क्यों कर पा रहे हैं ऐसा? बिकॉज हमारे साथ गड़बड़ क्या है, हमारी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, हम बड़ा डामाडोल है हमारा जीवन। हम भगवान के रास्ते पे चलते हैं लेकिन हमारी जो क्या होती है, डेडिकेशन बहुत वीक है हमारी। तो अपनी डेडिकेशन पे वर्क कीजिए, अगर आपकी डेडिकेशन में स्ट्रेंथ आ जाएगी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आती, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ भाई, मैक्सिमम नाश्ते के यहाँ मैं भी जाता हूँ जॉब्स पे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, मैं आराम से बैठता हूँ अपना वर्क प्लेस पे, ब्रेक्स में ज्यादातर कलीग के साथ बैठता नहीं, अपना अकेले बैठता हूँ और वहां पे अपना भगवान का नाम लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दिक्कत हमारे अंदर होती है बिकॉज हमारी डेडिकेशन वीक है, पहली पॉइंट। दूसरा, आप शुरुआत में क्या कर सकते हो, थोड़ा प्राइवेट रख सकते हो, आप मन के अंदर कर सकते हो, है ना? इसका कोई इलाज नहीं है अगर आप यही सोचते रहे कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। अगर आपने ये सोचना है फिर आपकी कोई प्रगति नहीं हो सकती, ये अटैचमेंट छोड़नी पड़ेगी आपको, बाकी लोग क्या सोचेंगे। अटैचमेंट ये बनानी है, मेरे प्रभु क्या सोचेंगे मेरे, क्या आपको सांसें जो मिल रही हैं वो उस अपने फ्रेंड की वजह से मिल रही है या बॉस की वजह से मिल रही है, जो आप खाना खाते हो और वो पच जाता है अंदर, जो पाचन शक्ति है आपकी, वो बॉस ने दिया आपके या आपने फ्रेंड ने दिया आपके, किसने दिया आपको? तो हमारा जो ग्रेटिट्यूड है वो किसके लिए ज्यादा होना चाहिए, भगवान के लिए जिसने वो हमारे आंखों की शक्ति दी है, हमें सुनने की शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है, राइट? इसलिए वी शुड बी थॉरली कन्विंस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने अपना ईश्वर को स्मरण करके, उनको थैंक यू करके हमने भोग लगाना ही लगाना है। और अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे हैं कोई बात नहीं, हाथ नहीं जोड़ सकते तो ऐसा नहीं है कोई रूल कि अगर आपने हाथ नहीं जोड़ा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाथ नहीं जोड़ सकते कोई बात नहीं, मैंने कई बार आसपास लोग खड़े हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, थोड़ा माहौल नेगेटिव है, तो आप उनके साथ आंखों में आके देख के उनकी तरह ऐसा लग रहा होगा उनको, आप उनकी बातें सुन रहे हो तब भी आप भगवान को याद कर सकते हो। आप बोलोगे नहीं नहीं निखिल जी ऐसा तो भी हो सकता है। अच्छा याद कीजिए, स्कूल का टाइम टीचर बोल रही थी तो आप क्या टीचर को ही सुन रहे थे, या बड़ी बार आपने टीचर को सुनते सुनते बाहर से लेकिन मन से आप पहुंचे हुए थे बाहर खेलने के लिए? कितने लोगों ने ऐसा किया है कि टीचर के सामने बैठे हो लेकिन सोच रहे हो किसी और चीज के बारे में? करते तो हो आप ये, क्या आप करते हो या नहीं करते हो? किया तो हुआ है आपने, तो बैठे हो आप दोस्तों के सामने, उनको पता भी नहीं चलेगा आप उनके सामने बैठे हो, ठीक है, आंखें भी खुली हुई हैं आपकी, लेकिन आप तब भी भगवान को याद कर सकते हो, हरे कृष्ण मन में कर सकते हो भगवान का नाम, आप थैंक यू कर लो भगवान को, 20-30 सेकेंड की प्रोसेस होती है, दैट्स इट। तो मतलब बड़ा ऑब्वियस तरह से भी कर सकते हो और बड़ा प्राइवेटली कर सकते हो, बट आपको स्ट्रांगली वो कमिट करना है ना अपने साथ कि मुझे ये करना है। देखिए, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, जब चाहत होगी तो रास्ते निकल आएंगे, और अगर आपकी चाहत स्ट्रांग नहीं है करने की फिर क्या होगा, फिर बहाने निकल आएंगे, समझ रहे हो? जब हम कोई चीज को नहीं करते तो उसका कारण सोसाइटी नहीं होती, ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ठीक है? ड्रग्स लेने वाले के पिताजी ने उसको बड़ी डांट लगाई, ड्रग्स मत ले, तो बताइए उसने ड्रग्स लेना छोड़ दिए? छोड़ दिए उसने। एक शराबी को उसकी बीवी ने बड़ी डांट लगाई, तू शराब पीना छोड़ दे, उसने शराब पीना छोड़ दी। एक चोर को उसके दोस्त ने बड़ा समझाया तू चोरी मत कर, उसने चोरी करना छोड़ दी। ये सारे लोगों ने क्यों नहीं छोड़ी ये बताइए? ना चोरी करने वाले ने चोरी छोड़ी, ना शराब पीने वाले ने शराब छोड़ी, ना ड्रग्स लेने वाले ड्रग्स छोड़े, किसी के समझाने से, किसी के बोलने से, किसी के इन्फ्लुएंस से। क्यों? क्योंकि वो अपनी हैबिट में बहुत पक्का है। हमारे साथ दिक्कत क्या है, बिकॉज हमारे साथ हमारी अभी भगवान की तरफ डेडिकेशन वीक है ना, इसलिए फिर हमें हर एक चीज के बहाने मिल जाते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए कि आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ भगवान के रास्ते में आगे बढ़े, और भगवान ने घोषणा की है मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं हो सकता, इतना कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको। हम इतने जबरदस्ती वेस्टर्न बन गए हैं, भगवान का नाम ही तो ले रहे हो, इतना डर क्यों रहे हो? क्या आप कुछ क्या क्या कर रहे हो आप, ऐसा कोई अपराध कर रहे हो भाई? भगवान का नाम लीजिए, और उसी बहाने आप इतने स्ट्रेंथ से कॉन्फिडेंस से बढ़िए आगे कि कि आपको देख के कुछ और चार लोगों का भी दिल करे कि हमें भी तो भगवान का नाम लेके ही खाना चाहिए। ऐसे तो हमारी मॉडर्न सोसाइटी में निखिल वरुण जी क्या पेरेंट्स सिखाते हैं, बेटा अंकल ने चॉकलेट दी थैंक यू करो, क्या थैंक यू बोलना सिखाते हैं हम लोग बड़े मॉडर्न बनते हैं तब? सिखाते हैं नहीं
बिल्कुल
सिखाते?
बिल्कुल
तो भाई उसी का तो राइट वर्जन है ना, जिसने सांसें दी हैं, जिसने ये हार्ट में ब्लड पंप हो रहा है आपका, जिसने सब कुछ दिया उसको थैंक यू तो करना है, राइट? दैट्स इट। तो इसमें हमें कुछ ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। बट हाँ ये जरूर है कि आप प्राइवेट भी कर सकते हो और अपनी घर की सिचुएशन को देख के, पर स्टार्ट जरूर कीजिए और फिर धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली सिचुएशन। बट हमेशा भगवान को सिंपलेस्ट फॉर्म, प्रभु को याद करो, भगवान का नाम जाप लो करो और थैंक यू करो और ब्लेसिंग्स मांगो भगवान की, दैट्स इट। इतना से स्टार्ट कीजिए, 30 सेकंड एक मिनट की तो बात है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। वरुण जी प्लीज कंटिन्यू।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, आज का सत्संग सच में बहुत ही डिवाइन था। इतनी सारी लर्निंग्स, इतनी सारी रियलाइजेशन मुझे हुई। इनफैक्ट आप बोल रहे थे तो मुझे पहली रियलाइजेशन हुई कि हम बोलते हैं कि ये कलयुग का समय है, तो बिल्कुल कलयुग का समय है। जो आपने बात बोली कि जब अच्छा काम करना होता है तो हम डर रहे हैं, लेकिन बुरा काम है तो हमें कोई हम इसको बिल्कुल नॉर्मल मान रहे हैं कि कोई भी बुरा काम सोसाइटी में बड़ा कुछ करते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अच्छा काम करना है तो हमें डर लग रहा है। और जो आपने उसमें सेकंड बात बोली कि उसका जो मेन रीजन है, हमें हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है, हमारे अंदर फेथ नहीं है। आइदर देर वुड बी फेथ और देर विल बी फियर। तो जहां पे भी हमें फियर आ रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा फेथ जो है वो गड़बड़ा रहा है। तो हमें अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ानी है सो दैट हमारा फेथ इतना स्ट्रांग हो कि हम डरे ना किसी भी सिचुएशन से। इनफैक्ट मैं एक मुझे एक एग्जाम्पल अपनी एक बात याद आ गई। लास्ट 2 ईयर्स पहले की बात है। एकादशी का दिन था और जो हमारी कंपनी में एक गेस्ट आए हुए थे, क्लाइंट आए हुए थे दूसरी कंट्री से, तो लंच के लिए बुलाया गया और एकादशी का व्रत था। मेरी वाइफ भी आज कॉल में, शी विल रिमेम्बर दैट डे। और इंडिया में भी अभी बहुत अच्छा कल्चर हो गया है कि आप कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ पे यू टेक अ बूफे, जितना मर्जी 2-3 घंटे हम खाते ही रहते हैं। और मेरी वाइफ हंस रही थी उस दिन मेरे ऊपर कि आज तुम्हारा व्रत है और तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ 2-3 घंटे सिर्फ खाना ही खाना होने वाला है। ठीक है, ऑब्वियसली कंपनी से था कि आप जाओ वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे बता दिया कि मेरा तो फास्ट है तो मैं बैठता हूँ। उस 2-3 घंटे में जब मैं देखा, मैंने ठीक है कुछ खाया तो नहीं, बट जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी वाइफ को फर्स्ट बात ये बोली कि मैंने आज रियलाइज किया कि लोगों ने खाना कितना स्टार्ट कर दिया। लोग खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और ये शायद से मुझे रियलाइजेशन नहीं हो रही थी। और जो आज का टॉपिक और जो लास्ट वीक का टॉपिक किया, जैसा अन्न वैसा मन, जैसे ही हम खाना खाते जा रहे हैं वैसे ही हमारी बुद्धि होती जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो ईटिंग आउट का कल्चर हो गया है, वो जो एक वाइब्रेशन का कंसेप्ट आपने बताया कि खाने में पानी में मेमोरी होती है, वाइब्रेशन होती हैं, और वो वाइब्रेशन डायरेक्टली हमारी बुद्धि को इफेक्ट करती हैं। इनफैक्ट जो मुझे भी एक बात समझ आती है कि इवन दो चलिए हम बाहर नहीं खाते, घर में भी खाते हैं, वेजिटेबल्स ही खा रहे हैं, लेकिन फार्म से लेके एक वहां से जहाँ से वो वेजिटेबल उगती है, वहां से वो एक वेंडर्स के पास जाती है, फिर एक मिडिल मैन के पास, फिर एक जो बेचता है सब्जी उसके पास से होके हमारे पास आ रही है। देयर इज मल्टीपल वाइब्रेशंस जो फूड के अंदर होती है, लेकिन जब हम उसको भोग लगाते हैं, भगवान से ब्लेसिंग्स मांगते हैं, तो जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस होती है भगवान उसको न्यूट्रल कर देते हैं और वो जो खाना है वो पॉजिटिव बन जाता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब वो पॉजिटिव खाना जो भगवान को जब हम भोग लगाते हैं वो प्रसाद बन जाता है, जो भी उसको ग्रहण करता है ऑटोमेटिकली उसका जो मन है वो पॉजिटिव होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच निखिल जी, ये इतनी डिटेल में ये भोग का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। बट अगेन जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि भोग को हम कैसा समझ लेते हैं ना कि ये खाना है, जैसे ही भोग की बात की खाने की बात है, बट ये ऐसा नहीं है। भोग मतलब जो हम इंजॉय करते हैं, और हम सब लोग इंक्लूडिंग मी हम भोगी बन गए हैं, और हमारा जो अध्यात्म का रास्ता है वो भोगी से योगी बनने का रास्ता है। हम सबको योगी बनने की तरफ एटलीस्ट अपना प्रयास करना चाहिए। तो जो भी चीज हम अपने प्लेजर के लिए, अपने इंद्रियों की खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, चाहे वो कार हो, मोबाइल हो, घर हो, 100 चीजें होती है, कपड़े हो, हम लेते हैं कि हमें खुशी मिलेगी, वहां पे कहीं ना कहीं हमें भगवान को ऑफरिंग देनी चाहिए, भगवान की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। इनफैक्ट मैं एक मजेदार बात बताता हूँ कि अगर आपने भी नोटिस किया होगा कि लोग आजकल कार लेते हैं, घर लेते, तो ऐसा बोलते हैं, यार मेरी कार की पूजा है, मेरी घर की पूजा है। आई थिंक वी शुड करेक्ट आर सेल्व्स, कार की पूजा नहीं होती है, घर की पूजा नहीं होती है, ईश्वर की पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है, भगवान की ब्लेसिंग्स होती है। वो हमें अपने जो भी हम चीज ले रहे हैं उस पे हमें चाहिए होती है, ना कि हम चीजों की पूजा करें। आई थिंक ये हमें एक टेक अवे लेना चाहिए। एक जो लास्ट पॉइंट मैं जरूर टच करना चाहूंगा, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, भोग लगाना कैसे है, उसमें दो पार्ट है, एक है इंटरनली एक्सटर्नली। अगर सिचुएशन ठीक है तो हम बिल्कुल एक्सटर्नली बिल्कुल प्रॉपर वे में, जो हमारे घर में छोटा मंदिर है, वहां भगवान से प्रेयर करके थोड़ा सा जो भी हमने बनाया है उसमें, आलू, ये प्याज और लहसुन अवॉइड करके, भगवान से ब्लेसिंग लेके उसको सारे खाने में मिक्स करके, अगर हम पूरी फैमिली कंज्यूम करें, पूरी फैमिली उस प्रसाद को खाएं तो सबके लिए अच्छा होगा। बट अगर सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं है, मे बी ऑफिस में जॉब करते हैं, मैं खुद कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, तो एक्सटर्नल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इंटरनली भगवान से कितना जुड़े हैं, हम इंटरनली भगवान को कितना थैंक यू कर रहे हैं। और मैं एक और रियलाइजेशन आपको बताता हूँ जो मुझे 2-4 दिन पहले ही हुई। जरूर मैं खाना खाने से पहले भगवान को 2 मिनट याद करता हूँ कि थैंक यू भगवान, आपने खाना दिया, आप प्लीज इसमें ब्लेसिंग्स डालिए। पर मैं जब खाना खत्म हो जाता था मैं नहीं करता था। मेरी सिस्टर है, मैं उनको रोज देख रहा हूँ, वो बड़े ही, जब उनका खाना खत्म हो जाता है तो बड़े ही प्यार से दोनों हाथ जोड़ के बोलती हैं कि भगवान थैंक यू, आपने मुझे खाना खिलाया, और मैं नहीं करता था। तो आई थिंक यही नहीं कि जब हम खाना स्टार्ट करें, बट जब खाना हम कंज्यूम भी कर लें तो भी हम अगर भगवान से प्रेयर करें कि थैंक यू भगवान, आपने जो खाना दिया वो मुझे संतुष्टि दे, मेरे विचार बदले, क्योंकि अगेन जैसा अन्न वैसा मन। अगर भगवान की ब्लेसिंग्स होगी तो हम अंदर से पॉजिटिव हो जाएंगे, और एक बार अंदर से पॉजिटिव हो गए, इंटरनली पॉजिटिव हुए, तो एक्सटर्नल पॉजिटिव होना, वो सबको दिखता ही है कि वो एक्सटर्नली पॉजिटिव कैसा है। हम में भी कलयुग का समय है, हम एक्सटर्नली अपने आप को इतना चमकाने में लगे हुए हैं, हर तरह से पॉलिश कर लेते हैं, ब्रश करते हैं, मेकअप लगा लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बट इंटरनली इंटरनली हम चमकते नहीं है। तो जो आज हमने भोग का टॉपिक डिस्कस किया, भगवान की ब्लेसिंग्स लेंगे तो आई थिंक हम सब लोग इंटरनली इतना शाइन करेंगे, और वो शाइन हमारे एक्सटर्नल बॉडी पे भी आ जाएगी। थैंक यू सो मच निखिल जी आज ये टॉपिक करवाने के लिए। और चलिए अब हम चलते हैं अपने सत्संग के सेकंड पार्ट में, जो है कि रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शंस। जो भी व्यक्ति अपनी बात शेयर करना चाहे प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, हम एक एक करके आपसे रिव्यूज लेंगे। चलिए सबसे पहले आज हम चलते हैं काजल जी के पास। काजल जी प्लीज, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल वरुण जी, हरी हरी बोल निखिल जी। आज हम लोगों ने सुना कि कैसे हम मन, जैसा मन वैसा, क्षमा करें, ये जैसा भोजन वैसा मन पे कैसे हम डिटेल में समझा, और इसमें हम एक इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके से भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल पॉसिबल ना हो तो इंटरनल सबसे जरूरी जो है भगवान को याद करते हुए भोजन करना, और भोजन के बाद भी उन्हें याद करना। दूसरी जो बात हो रही थी कि लोग क्या कहेंगे, उस पे एग्जाम्पल भी दिया निखिल जी ने, तो उसमें मेरा यही मानना है कि जैसे आप कोई भी चीज होती है पॉजिटिव या बड़े बड़े फंक्शन, तो हर चीज हाईलाइटेड होती है। तो अगर आप नॉनवेज या वेज की ओर जा रहे हो, सात्विक भोजन ले रहे हो, तो लोग इसको नोटिस करते हो, तो इसमें बुरा ही क्या है? लोग अगर बोल रहे हैं कि आप तो देखो आप तो कन्वर्ट हो रहे हो, तो इसमें बुरा ही क्या है? इसको भी हमें मतलब एक अच्छे तरीके से लेना चाहिए कि, और फिर इसको नोटिस में आने देना चाहिए लोगों को। और जैसे ही आप भोजन में आप चेंज करेंगे, वैसे ही आपके व्यवहारों में चेंज होगी, और वैसे ही लोगों पे भी आपकी बातों का असर पड़ेगा। हरे हरी
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल काजल जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। और मैंने भी आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। हम लोग आजकल, जबकि अच्छी बात है वेजिटेरियन होना, बट फिर भी हमें लग रहा है कि मे बी सोसाइटी में, मे बी कलयुग का समय है कि लोग हमें घेर लेते हैं कि भाई क्यों वेजिटेरियन खा रहे हो, नॉन वेज खाना चाहिए, इसमें एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। जो कोर कंसेप्ट है, जो वैदिक कंसेप्ट है, जो बेसिक चीजें हैं, वो शायद से हम भूल गए हैं। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम वेजिटेरियन खाना खाएं, उसमें भी भगवान को भोग लगा के खाएं। थैंक यू सो मच काजल जी अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। चलिए इसके बाद हम चलते हैं लता जी के पास। हरी हरी बोल लता जी, हरी हरी बोल।
हरी बोल एवरीवन, हरी बोल निखिल जी। सबसे पहले तो निखिल जी, आपका हमारे सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे सत्संग में आए, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और सारे डिवोटी को भी। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा था, जैसा अन्न वैसा मन। आपने बड़े ही सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें बताई कि हमें भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। जब भोग लगाते वो प्रसाद बन जाता है, और हम जब खाना बनाते हैं तब भी हमें क्या है, भगवान के भजन गाते हुए खुश मूड से भगवान का नाम लेते हुए ही अपना भगवान का भोग बनाए, तो सारे परिवार में क्या है, पॉजिटिविटी आती है। और आपने एक चीज बड़ी अच्छी बताई कि जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं यंग बच्चों के लिए भी आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई कि क्या है, मानसिक रूप से जैसे भोजन की थाली हमारे आगे आए, हम मानसिक रूप से भी पहले भगवान को याद करें, तो फिर उसके बाद हम अपने भोजन को ग्रहण करें। तो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि 2017 में मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया, और तब मैं भी भोग नहीं लगाती थी। क्यों? क्योंकि हमारे घर में भी एग बनता था, लहसुन प्याज वाला खाना बनता था, तो हमने जैसे सुन रखा था कि भगवान को ये वाला खाना नहीं भोग लगाया जाता, तो मैं नहीं लगाती थी। कभी कभी जैसे कोई स्पेशल डे हो तभी हम भगवान को भोग लगाते थे। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस जुड़ने के बाद जब भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, जब आप भोग के बारे में बताते थे कि हमें भोग जरूर लगाना चाहिए, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे भगवत गीता में पढ़ती गई वैसे वैसे क्या है, फिर मेरा जब मैं हम एग खाते थे, मैं बताया मेरा अपने आप मन किया कि मुझे एग नहीं खाना चाहिए अब, और मेरा एग खाना छूट गया। फिर क्या हुआ, फिर भी मुझे अंदर से आता था ये कि मैं इतना अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ फैमिली के लिए, लेकिन भगवान को हम उस खाने का भोग नहीं लगा पाते। तो एक बार जब सावन का महीना होता है उसमें हम सोमवार के व्रत रखते हैं, तो सोमवार के व्रत वाले दिन हम क्या है, बिना लहसुन प्याज के खाना बनाते थे। तो 2 साल पहले की बात है, 2 साल जब सावन का महीना आया तो मैंने अपनी बहू को बोला कि हमने इस बार क्या है, सावन के पूरे महीने में व्रत वाले दिन भी और पूरे महीने हम लहसुन प्याज के बिना खाना खाएंगे, और उसने हमने ऐसा ही एक महीना खाना खाया। तो मैंने ये नोट किया, जब से हम बिना लहसुन प्याज के हम एक महीना खाना खाया, तो हमें क्या है, खाना भी हमारा बहुत टेस्टी बन रहा है, और सब लोग क्या है, बड़े आराम से बड़े पसंद से खाना खा रहे हैं, और कोई भी हमें मुश्किल नहीं आ रही खाना बनाने से। पहले हम क्या सोचते थे, क्योंकि हमने बचपन से ही ऐसा ही खाना खाया लहसुन प्याज वाला, तो मुझे भी लगता था कि हम कैसे खाना बनाएंगे, बिना लहसुन प्याज नहीं डालेंगे तो ग्रेवी वाली सब्जी कैसे बनेगी, वैसी भी सब्जी कैसे बनेगी, हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन जब मैंने बिना लहसुन प्याज के खाना बनाया तो खाना बहुत अच्छा बना। उसके बाद हमने क्या है, लहसुन प्याज भी जैसे हमारा छूट गया। और जैसे आप बताते हो सत्संग में बहुत सारी बातें, कि जैसे जैसे भगवत गीता पढ़ते जाते हैं हमारी नेगेटिव हैबिट्स अपने आप, हमें छोड़नी नहीं पड़ती, धीरे 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 हमारी सारी नेगेटिव हैबिट छूटती जाती हैं। आज मैं बताऊं, आज अपने फैमिली में हम लोग क्या ना, हमारे पहले मेरा एग छूटा, फिर मेरी सारी बच्चों ने भी एग खाना छोड़ दिया। मैंने किसी को नहीं बोला कि आप मत एग खाओ, लेकिन उन्होंने अपने आप ही एग खाना छोड़ दिया। अब लहसुन प्याज भी हम लोग नहीं खाते, अब क्या है, बिल्कुल इसको उतना सिंपल सात्विक खाना खाते हैं। और आपने बड़ा अच्छा बताया कि हम जब सात्विक खाना खाते हैं और जब फिर भोग लगा देते हैं तो वो हमारा क्या है, दिव्य बन जाता है, और भोग जो है प्रसाद बन जाता है। तो हमें ऐसा ही खाना खाना चाहिए, और भगवान को जितना हमें क्या है, भगवान को याद करना है, जितना भगवान का नाम जाप करेंगे उतना ही हमारा क्या है, मन शांत रहेगा। खाने का हमारे भोजन पर बहुत असर करता है, हमारी फीलिंग वैसी रहती है, हमारे विचार वैसे रहते हैं, हमारे अंदर जो नेगेटिव हैबिट्स, जो हमारे अंदर बहुत सारा गुस्सा रहता है, मेन तो क्या है, सबको का फैमिली में आजकल क्या हो गया, गुस्सा बहुत, छोटे से लेकर बड़े तक सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से पर बहुत कंट्रोल रहता है जब हम सात्विक भोजन खाते हैं। और आपने कहा एक बड़ा अच्छा उदाहरण लगा कि जैसे घर में कोई बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग आपके घर में, अगर उनको हम खाना ना खिलाएं तो उनको कितना बुरा लगता है कि बड़ों को खाना नहीं खिलाया, खुद खाने बैठ गए। तो जो परम पिता परमात्मा है हमारे, सबसे जो हमारे गॉड फादर जो हमारे हैं, उनको सबसे पहले हमें भोजन अपना भोग जरूर लगाना चाहिए। और खाली भोग की बात नहीं आपने बताई, आपने बताया कि जो कुछ भी हम घर में लाएं, कुछ भी खरीद के लाएं, सबसे पहले भगवान को हमें ऑफर करना है, तभी हम सारी चीजें यूज करें। तो ये एक तरह की हमारी फिर आदत बन जाएगी। एक पानी का गिलास भी हम पिए तो उसको भी हम भगवान का याद करके कि भगवान आपने हमें पानी दिया और इसलिए आपका धन्यवाद। हर चीज के लिए हमें भगवान का थैंक्स करना है। इसका मतलब ये कि हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, 3 टाइम तो हम खाना खाएंगे, 10 बार हम पानी पियेंगे, कुछ फ्रूट्स खाएंगे, तो जो भी खाएं भगवान को ऑफर करके खाएं। तो इस बहाने क्या है, उतनी ही बार हम क्या भगवान को याद कर पाएंगे। तो जितनी बार खाना खाएंगे उतने भगवान को याद करेंगे, एक तरह भगवान का हमारा भगवान का नाम जाप हो जाता है, इसी बहाने हमारा नाम जाप हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से निखिल जी आपने भोग की बात बताई, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आज सारे डिवोटीज को आपका ये सत्संग सुनकर सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू निखिल जी इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताने के लिए, और इतने सिंपल तरीके से आपने सबको समझाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू जी, हरि बोल।
हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच मम्मा। और फ्रेंड्स, जैसे मम्मा बता रहे थे कि वो पहले एग लेते थे और लहसुन प्याज खाते थे, वो छूट गया। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं, लहसुन प्याज मैंने नहीं छोड़ पाया हूं, बट यस मैं बहुत नॉनवेज कंज्यूम करता था, बहुत ज्यादा इनफैक्ट। और जब सही टाइम आया तो वो छूट गया। कई बार ना कन्फ्यूजन हो जाता है, स्पेशली जो नए नए डिवोटीज होते हैं, कि अच्छा अध्यात्म के पाथ पे चलेंगे, थोड़ा सा भगवद गीता सुनेंगे, तो ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। मेरा जो एक्सपीरियंस है कि ये, और इनफैक्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है, और हम जो भी रिव्यूज में बाकी डिवोटीज का एक्सपीरियंस सुनते हैं, कि हम कुछ छोड़ते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही भगवान की ब्लेसिंग्स होती है, वो अंदर से कॉलिंग आती है, एफर्टलेसली सब कुछ छूटता चला जाता है। आप उसमें एफर्ट नहीं करते हो, वो फिर उल्टा हो जाता है। जैसे अभी लगता है ना कि हमें एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है अगेन वो उल्टा है, एफर्टलेसली सब कुछ छूटता चला जाता है। आपको फिर कुछ करना हो तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा मैं नॉनवेज कंज्यूम करूं, आप उसके बारे में 10 बार सोचेंगे, वो एफर्ट हो जाता है। सब कुछ एफर्टलेसली होता है, सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, बस भगवान को अगर हम स्मरण करते रहें बाकी सब कुछ एफर्टलेसली हो जाता है। थैंक यू सो मच मम्मा अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। चलिए हम स्वर्ण जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल स्वर्ण जी। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल वरुण जी। हरी हरी बोल। मैं स्वर्ण लता गुप्ता नूरपुर से बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं पूजा जी और प्रियंका जी के पिताजी की दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। दूसरा, मैं निखिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो उन्होंने आज हमें इतना अच्छा दिव्य सत्संग कराया, बहुत ही आनंद आया। पिछला सत्संग भी बहुत अच्छा था, उसमें उन्होंने बताया था कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो बहुत बढ़िया, अन्न का हमारे मन से बहुत गहरा संबंध है, हम हर समय 3 गुणों के अधीन बने होते हैं। तो भगवत गीता से हमें इन्हीं गुणों के बारे में ज्ञान हुआ है। जीवन को जीने की हमने कला सीखी है। 3 प्रकार के गुण, सात्विक, राजसी, तामसिक, हमें अपने आप को दिव्य करने के लिए धीरे धीरे अपने गुणों के प्रभाव को चेंज करना है। तामसिक और राजसी गुण के ऊपर उठकर सात्विक गुण के अंदर आना है। हमारा भोजन, हमारी वाणी, हमारे विचार, हमारा स्वभाव, सब कुछ सात्विक होना चाहिए और हमें तभी शांति प्राप्त होगी, हमारा मन तभी शांत होगा। तो राजसी गुण में कंपैरिजन और रैट रेस से हमें बचना। रैट रेस में कभी भी हम डिजायर्स हमारी जो है खत्म नहीं होंगी, उस स्थिति में हमारे पास हमेशा इंटरनल पीस की कमी रहेगी। तो तामसिक तो हमें भूल ही जाना चाहिए, खैर वो ना तो हम जाते हैं स्वर्ग ना ही वो होता है। तो राशि और तामसिक में हम मन के बुलावे में घूमते रहते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें सात्विक गुण अपनाना है। हर स्फेयर में हमें सात्विक बनना है। सादा खाना खाना है, भोग लगाकर खाना है, भगवान को अर्पित करके खाना है। ऐसा ना करके हम पाप को खाते हैं। प्रभु इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े हैं, तो हमें प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए भगवान को भाव से भोग लगाकर प्रसाद समझकर अन्न ग्रहण करना है। भोग खाने से भगवान की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और इस ब्लेसिंग से हम अपनी और अपने परिवार की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहना है। तो हमने बचपन में देखा है वरुण जी, निखिल जी, हमने बचपन में देखा है कि मेरी दादी जी थे तो वो सबसे पहले जब खाना बनाते थे तो सबसे पहले अग्नि को आहुति देते थे, फिर गाय की रोटी निकालते थे, फिर कुत्ते की रोटी निकालते थे और फिर कौए की रोटी निकालते थे, और उसके बाद एक थाली ब्राह्मणी को दी जाती थी जिसे हम पहाड़ी भाषा में ग्यासन भी कहते हैं। तो उसके बाद भोग लगाकर वो सबको सर्व करते थे। परंतु क्या है, हम जीवन में इतने उलझ गए हैं, इतने इतने बिजी हो गए हैं कि हम सब कुछ भूल गए। मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। तो गीता के 3रे चैप्टर को जब जाना तो फिर से सब कुछ याद आया, सब कुछ जो छूट गया था वो फिर से सब कुछ याद किया और भाव से भोग लगाकर खाना शुरू किया। नॉनवेज खाती थी, जिस दिन ये चैप्टर पढ़ा उसी दिन घर में नॉन वेज बना हुआ था मेरे, तो टेबल पर बैठ कर बोल दिया कि आज से मैंने इसको सेवन नहीं करना है। कभी व्रत नहीं रखा था, शुरू किया, अब आराम से व्रत करती हूँ। पहले बहुत डरती थी, उस दिन से कभी भी मैंने, उसके बाद मैंने कभी भी नॉन वेज नहीं खाया। आज अगर 4 बार भोजन करते हैं, 4 बार हम पानी पीते हैं, तो हम हमेशा भोग लगा कर खाते हैं, पानी पीते हैं, बहुत आनंद आता है। कभी प्याज और लहसुन तो नहीं छोड़ा, अभी प्याज और लहसुन तो नहीं छोड़ा, क्योंकि परिवार की कुछ अड़चने होती हैं, उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर व्रत नहीं रखती थी, व्रत से बहुत डरती थी, परंतु जब से भगवत गीता की प्रेरणा से व्रत रखना शुरू किया है, ना तो व्रत से डर लगता है, ना ही भूख ही लगती है, और आसानी से व्रत पूरा कर लेती हूँ। ये सब कुछ मैंने गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर सत्संग साधना आदि से ही सीखा है। मेरे हस्बैंड इस रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलते हैं, परंतु अब जब खाना बन जाता है तो कई बार पूछते हैं, भोग लगा लिया क्या? चलिए मानते नहीं तो भगवान के बारे में पूछते तो हैं। अमेजिंग सत्संग निखिल जी, हम सारी उम्र मटेरियल लाइफ में घुसे रहे, अपने ही इंद्रियों को कुछ करने में लगे रहे, अपनी ही इंद्रियों को भोग लगाते रहे, परंतु जब से भगवत गीता का ज्ञान मैंने पाया है, मुझे पता चला है कि अब इस हमें भगवान की खुशी के लिए भोग लगाना है। भोग लगाने से वो प्रसाद बन जाता है, क्योंकि हर चीज हमें प्रभु से मिलती है, प्रभु को थैंक्स करना है और चैंटिंग करनी है और प्रार्थना करनी है कि हम इसका सदुपयोग करें, आपकी सेवा में इसे यूज करें। इस तरह से हर वस्तु हमारे लिए प्रसाद बन जाएगी। हमें हर चीज में हर समय प्रभु का स्मरण करना है, फिर उसे प्रयोग करना है। इस तरह से हम अगर चार बार खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, फल खाते हैं, कम से कम हम 15-20 बार तो हम खाते ही हैं। अगर हम हर बार प्रभु को याद करेंगे तो हमें भगवान का नाम याद करने की एक आदत सी पड़ जाएगी। इस प्रकार हमारा भगवत स्मरण अपने आप ही बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर हम भोग लगे प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा भी कर देते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अगर हम बिना भोग लगा के कुछ खाते हैं तो वो हमारे लिए पाप बन जाता है, वो हम पाप खाते हैं, क्योंकि भगवान दिव्य हैं, प्रसाद में भगवान का आशीर्वाद होता है, तो हम भी दिव्यता की ओर जा रहे हैं ऐसा करके। अगर हम घर में ऐसा माहौल रखते हैं तो बच्चों को भी हम संस्कार देते हैं। मेरी दोती मेरे पास थी तो वो मेरे साथ साथ भोग लगाना सीख गई थी। भोग भी क्या, वो भजन करके भोग लगाती थी, परंतु अब चली गई है तो वो अब अपने घर में, तो वो चूसका छूट गया है। हमें कहीं, अगर हम आपने बताया कि हम कहीं बाहर हो तो हम इंटरनल भोग भी लगा सकते हैं। लहसुन तो खाते हैं, प्याज लहसुन तो हम खाते हैं, परंतु खाना बनाने से पहले ये सोचती हूँ कि कौन सा खाना बनाऊं जिसमें प्याज लहसुन का प्रयोग ना हो, जिसे मैं भगवान को भोग लगा सकूं। भोजन बनाते हुए या तो मैं भजन करती हूँ, सुनती हूँ, या बबीता जी मेरे को रोज निखिल जी के पॉडकास्ट भेजती हैं, उनको सत्संग को सुनती हूँ, पूरी श्रद्धा से भगवान को याद करके भोग लगाने की कोशिश करती हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल सुमन जी, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू, बहुत ही मजा आया मुझे सुनने का। और एक बात जो आपने बोली ना कि आपके घर में नॉनवेज बना था और आपने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि बस आज के बाद नहीं खाऊंगी, यही पॉइंट मैं पिछले रिव्यू में भी बोल रहा था कि कई बार हम लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, कैसे हो पाएगा। हमें हमेशा याद रखना है कि जब भगवान की ब्लेसिंग्स मिलती है तो सब कुछ एफर्टलेसली हो जाता है। मुझे हमेशा एक एग्जांपल याद आता है, अंगद महाराज, अगर सिंपल भाषा में बोले तो वो एक वानर थे। वो भाई रावण की सभा में गए, वहां पे उन्होंने अपना पांव रख दिया और बोल दिया कि जो कोई भी हिला के दिखाए राम भगवान से लड़ने की बात तो दूर की बात है। ये जो पॉइंट है कि उन्होंने वहां पे पांव रख दिया और कोई हिला भी नहीं पाया, ये जो शक्ति आती है जिसको विल पावर बोल सकते हैं, आप शक्ति बोल सकते हैं, अध्यात्म बल सकते हैं, बोल सकते हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स बोल सकते हैं, यही सारी बात है। जब भगवान को भोग लगाएंगे वो ब्लेसिंग्स हमारे अंदर जाती है, वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, तो सब कुछ एफर्टलेसली हो जाता है। थैंक यू सुमन जी। इनफैक्ट जो आपने सेकंड एग्जांपल दिया कि अंकल अब ये पूछते हैं कि भगवान को भोग लगाया नहीं लगाया, तो वही बात होगी कि हो सकता है कि हम एक्सटर्नली अभी भी नहीं करें कुछ, डजंट मैटर। अगर कोई व्यक्ति इंटरनली जुड़ रहा है, इंटरनली हार्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो जाता, ये एक बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग्स होती है भगवान की। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो हार्ट ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच सुमन जी अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। फ्रेंड्स, हमारा समय हो रहा है, आज का भजन हमें राज्य सुनाएंगे, पर राज्य के पे जाने से पहले हम सुधा जी की बात जरूर सुनेंगे। हरी हरी बोल सुधा जी, हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी, निखिल जी आपको भी हरी हरी बोल। वरुण जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर था और बहुत सीखने को मिला। ये स्पेशल सत्संग हमारे लिए एक रिमाइंडर्स होते हैं, अगर हमारे से कुछ गलती भी हो रही है तो हमारे दिमाग में एक रिमाइंडर आ जाता है। तो मैं हमेशा अटेंड करती हूँ, पिछली बार भी जैसे निखिल जी ने हमें और विपुल जी थे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वैसी वाणी, ये टॉपिक बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था और बिल्कुल मुझे बहुत अपील किया था। और आज भोग का जो टॉपिक था ये भी मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि भोग जो है वो बिल्कुल गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के सीखा कि कितना इम्पोर्टेंट है। पहले इसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं था, लेकिन जब से भगवत गीता पढ़ी है और चैप्टर 3 कर्मयोग का 13वां श्लोक, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि अगर हम भोग नहीं भगवान को लगाते, हम चोर और पापी हैं, अब ऐसी फीलिंग आने लगी है। क्योंकि जब भी मैं कोई चीज लाती हूँ भगवान को ऑफर करती हूँ, फिर प्रसाद वो उनके रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन पहले तो हम अपने इंद्रियों के प्लेजर के लिए ही सब कुछ खा रहे थे, इंद्रियों को सुख करने के लिए, इंद्रियों को आनंद देने के लिए ही खा रहे थे। लेकिन जैसे अब भगवान की दया से हम समझ रहे हैं कि हमें योगी बनना है, भोगी नहीं बनना है, और अपनी इंद्रियों और मन को भोग नहीं लगाना है, कुछ भी बनाना है हमें, चाहे कुछ भी खरीदना है, चाहे जैसे निखिल जी समझाया मोबाइल है तो प्रभु के आगे रखना। मैं भी ऐसे करती हूँ, पैसे भी जब लाती हूँ एटीएम से भगवान के आगे रखती हूँ, प्रभु ये आपके दिए हैं, आपकी दया से ही सब कुछ हो रहा है, तो प्रभु इस पे अपने आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग जरूर डालना। तो ये कंसेप्ट तभी आया समझ में जब हम भगवान से जुड़े और गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े और इन टॉपिक को समझाओ, इतने ब्यूटीफुल टॉपिक हैं और इतने कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारी लाइफ के लिए, और इससे अच्छी फीलिंग्स आती है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, पानी पिएं तो भगवान का नाम लेकर। मैं भी ऐसा करती हूँ, हर चीज का भगवान को भोग लगाती हूँ, थैंक्स करती हूँ। जैसे आज मैं एक्सपीरियंस छोटा सा ऐसे सुनाती हूँ कि जैसे अरबी के पत्ते होते हैं आजकल हम उनके चंबा वाले जानते हैं, पतरोड़ू जैसे बनाते हैं, संक्रांति आती है, संक्रांत आई पीछे वो पत्ते मिले, पत्ते कुछ अच्छे नहीं थे, मैंने बनाए बनाए भगवान को भोग भी लगाया, मुझे तसल्ली नहीं हुई, उसके बाद मार्केट में मिले ही नहीं, मैं सोच रही थी मिल जाते तो चलो दोबारा बनाती भगवान को भोग लगाती। तो आज अचानक ही एक लेडी आई और वो छोटे छोटे पत्ते ले आई, वो मैंने उसको बोलना भी नहीं था, वो आती रहती थी लेकिन काफी टाइम बाद आई, पता नहीं उसको क्या इंट्यूशन हुई, वो छोटे पत्ते ले आई और मैंने उनको धोया, उनको बेसन से रोल किया और उनको स्टीम किया और फिर मैंने उनको फ्राई किया और भगवान को भोग लगाया, और वो मैंने फिर प्रसाद के रूप में सबको दिया। बाद में तो बोलते ये तो बड़े टेस्टी हैं और नरम भी अच्छे, तो मुझे लगा कि भगवान ने भी मेरे मन की शायद भाप पढ़ ली है और वो चीज घर में आ गई, तो मुझे बहुत खुशी हुई और एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई। एक आनंद जो होता है ना भगवान को कुछ भी भोग लगाए तो वो उसे मिलता है ना, वो मैंने बहुत अच्छा फील किया, और ये फीलिंग तभी आ रही है जब हम जब से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ। तो जैसे निखिल जी ने भी समझाया कि घर के फैमिली मेंबर्स को भी भोग लगाने में हमें इन्वॉल्व करना है, बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है, और बच्चों को भी सिखाना कि प्रभु को थैंक्स करो। पहले जैसे सोचते थे कि ये तो भगवान दे रहे हैं, भगवान को क्यों हम भोग लगाए या रखे, कई बार कई लोग बोलते बोलते भगवान तो दे रहे हैं लेकिन हम भगवान को ही वो आगे अर्पित करें ये तो नहीं कुछ अच्छा लगता। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद ही समझ आई कि भगवान तो दे रहे हैं तो भगवान को भी तो हमें अर्पित करना है, भगवान का थैंक्स भी करना है, उसका कुछ हिस्सा भगवान को आगे रख दें तो उसमें हमें क्या फर्क पड़ेगा, वो प्रसाद बन जाएगा अगर भगवान को भोग लगा लेंगे तो उसमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएंगी, भगवान का आशीर्वाद होगा। लेकिन ये समझ तभी आई है गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद, और सभी के रिव्यूज बहुत अच्छे थे और ऐसे स्पेशल सत्संग होते रहे तो इससे बहुत हमें रिमाइंडर्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हरी हरी बोल सभी को।
हरी हरी बोल सुधा जी, थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस आपने सुनाया। और ये जो आपने लास्ट में बात बोली ना, ये क्वेश्चन बड़े सारे लोग करते हैं कि अरे भगवान ने तो हमें दिया तो हम भगवान को ही वापिस चढ़ाएंगे, ये बात तो कुछ जमी नहीं। तो भाई इसका बड़ा सिंपल सा आंसर होता है भाई, जब आपके बच्चे कई बड़े सारे लोगों के बच्चे दूसरी सिटीज में, दूसरी कंट्रीज में जॉब करते हैं, उनका काम है वहां जॉब करना, तो पेरेंट्स का कैसे मन करता है कि वो हमें याद कर ले। अब बच्चे अगर बोले मैं इंटरनली याद करता हूँ, या एक निखिल जी ने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे अगर आपने पॉकेट मनी दी है बट उससे आपके लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट ले आए, चाहे वो आप करोड़पति भी हो और वो एक छोटा सा 5 रुपए का कार्ड भी ले आए, तो वो खुशी, तो वो हम जो हर चीज को जो एक गलत लॉजिक से सोचना स्टार्ट कर देते हैं, वही आई थिंक जो भगवान ने, जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि तामसिक और राजसिक बुद्धि होती है, हर चीज को गलत एंगल से ही तोल लेना, ये वो मेजर है ही नहीं। सारा मेजर इंटरनल है, सारा मेजर ही भगवान भाव का है। तो हमें भगवान के साथ भाव जोड़ना, और भोग जो है वो भगवान की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स होती है जो हमारे अंदर आती है और फिर हमें अंदर से ट्रांसफॉर्म करती है। थैंक यू सुधा जी अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। मैंने बोला था हम भजन की तरफ चलते, बट मैं जरूर चाहूंगा हम 2 मिनट यामिनी जी को जरूर सुन लेते हैं। हरी हरी बोल यामिनी जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल वरुण जी। मैं एक्चुअली फिर सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए ही हैंड राइज किया था, टाइम हो गया था तो सोच ही रही थी करूँ कि नहीं, लेकिन निखिल जी भी है तो मैं गोलोक एक्सप्रेस का, आपके थ्रू गोलोक एक्सप्रेस से जो मेरे मिलना हुआ, मैं उन सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ, स्पेशली ये आपका कि आपका स्पिरिचुअल ग्रुप अगर मैंने ज्वाइन नहीं किया होता तो शायद ही मैं आज ऐसी होती। बाबा के जाने के बाद मैं खुद लॉस्ट हो चुकी थी, पता नहीं चल रहा था कि यानी कैसे दिन निकलेंगे या मैं कहाँ क्या मिस कर रही हूँ। लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है कि बाबा के साथ मेरी जो डेली सत्संग हुआ करता था, जो बाबा अपने डिवाइन एक्सपीरियंस मुझे बताते थे, तो डर नाम की चीज ही मुझ में नहीं थी। और उनके बाद शायद मैंने वही चीज खोई थी, वही हिम्मत खोई थी जो मुझे ब्लेसिंग के थ्रू गोलोक एक्सप्रेस के द्वारा ही मिली है। तो आज का सत्संग मैंने लता जी के कारण ज्वाइन कर सकी हूँ, तो मैं उनका भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सत्संग बहुत ही अच्छा है और खास करके हम जो सोचते नहीं वो हमें गोलोक एक्सप्रेस से मिल रहा है, कुछ अलग ही ब्लेसिंग सी है। तो मैं इसलिए से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, हार्टली थैंक यू करना चाहती हूँ सभी को। थैंक यू।
हरी हरी बोल। थैंक यू यामिनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़ते हैं तो हम लोग इतना अच्छा सत्संग करवा पाते हैं, आप सबके भी ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर। और आज बड़े सारे पॉडकास्टर्स जो पॉडकास्ट के थ्रू हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे साथ हैं आज। और मैं 2 मिनट और ले लेता हूँ। नीलम जी, आप बात करना चाह रही हैं?
हरी हरी बोल एवरीवन। जी सर, एक्चुअली मैं बात करना तो चाह रही थी पर टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम ही टाइम लूँ। एक्चुअली मैं भी थैंक यू ही करना चाहती थी सर, आपका, वरुण जी आपका, निखिल जी आपका, मतलब बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग की वजह से मेरी लाइफ भी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही है डे बाय डे। और भोग का कंसेप्ट मुझे जुड़े हुए शायद 2-3 मंथ्स ही हुए हैं, बट ये भोग मैं भी अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ। कोशिश करती हूँ रोज की करूंगी, बट कभी भूल जाती हूँ, कभी कुछ हो जाता है, सिचुएशंस नहीं बैठ पा रही है। तो आज मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जरूर कोशिश करूंगी, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी। और वाइब्रेशंस का कंसेप्ट जो आपने आज बताया मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, लास्ट सत्संग से और ये 2 सत्संग से मैं बिल्कुल मैं आगे से जरूर कोशिश करूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
हरी हरी बोल नीलम जी। और हम भी प्रेयर्स करेंगे कि भगवान आपके अंदर वो विल पावर दें, आपकी वो सिचुएशन इतनी अच्छी बने कि आप बड़ी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, सब कुछ एफर्टलेसली हो जाता है। आप बस इच्छा रखिए, सब कुछ एफर्टलेसली हो जाता है। 6 महीने बाद आप रिव्यू में दूसरे लोगों को गाइड कर रही होंगी कि वो कैसे लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच नीलम जी। हरी हरी बोल। चलिए अब हम भजन की तरफ चलते हैं। राजीव प्लीज, आप अपने 2 मिनट थॉट्स भी शेयर कर सकती हैं और फिर भजन भी शेयर कर सकती हैं। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हाँ जी, हाँ जी, सत्संग बहुत ही अच्छा, बहुत ही दिव्य था और बिल्कुल खुले, बिल्कुल निखिल जी ने साथ में ये जो बात कहते हैं कि अपना एटमॉस्फेयर घर का देख के उसी हिसाब से चलो, ये एक जो है मेन पॉइंट है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे घर का कुछ ऐसे होता है कि हम एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन ये मेरे को इनके सत्संग में कल परसों था तब भी यही कि आप घर का भी एनवायरनमेंट देख के उसके हिसाब से उन्हीं की करना पड़े तो आप कर सकते हो। और वही बात हम ज्वाइंट मीन से डॉटर इन लॉ है, बच्चे हैं, पोती हैं, सब है, तो उसी वजह से हम ये कर पाते हैं। तो ये बात बिल्कुल बहुत ही 100% है कि अगर हम अपने घर की सिचुएशन देख के, घर का थोड़ा माहौल देख के चलते हैं तो बच्चे अपने आप ही साथ आ जाते हैं। बाकी भोग का कंसेप्ट मैं शुरू से स्पिरिचुअल हूं और सब कह रहे हैं ना हमारे घरों में छूट गया, लेकिन हमारे घर में भोग सुबह शाम, वैसे बाकी जो चीज आती है वो तो लगती है, लेकिन हमारे घर मैं कह रही हूँ कि हमारी चौथी पीढ़ी है, उन्होंने वही आरती स्नान करवाना, अगर हमारे दादी करते थे तो मम्मी ने अब नहीं है तो हमारी भाभियां वगैरह पूरी प्रॉपर उससे भोग वगैरह का उनके घर में है, क्योंकि फिर हम घरों में जाते हैं तो हमें वो चीज वो नहीं होती। तो हमारे घरों में भोग शुरू से चला आ रहा है, स्नान कराना, भोग लगाना, ये चीज हमारी भाभियों ने या मेरी सिस्टर्स है उनकी बहुओं ने, ये चीज उनके घर में अभी तक चलती आ रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चार बार नहीं वो नहीं, सुबह शाम का भोग तो है ही सही और बीच में कुछ नया कुछ आता है तो पहले भगवान। तो आज मेरा जो भजन है वो भी वही शबरी माँ के उस पे है। तो थोड़ी सी बात इसमें मैं कहूंगी कि मेरे को कई बार वो होती है निखिल जी, जैसे हम सिंपल रोज का खाना बनाते हैं उसमें तो हम ठीक है भोग देना है टेस्ट नहीं करते, लेकिन एक दो बार मैंने ये नोट किया कुछ अलग सा बनाते हैं, जैसे उस दिन भगवान जी का जन्मदिन था, 4-5 चीजें पंजीरी वगैरह बनाई, उसमें चीनी डाल, तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि भगवान जी को भोग देना है, टेस्ट करूं कि ना करूं, बड़ी कंफ्यूज। फिर दिमाग में आया तो शबरी माँ भी तो सारे जूते कर करके दिए थे, फिर दिमाग में आया हम कहा शबरी माँ तक थोड़ा ना पहुंचे हैं। तो ये जरा सी कई बार कंफ्यूजन जो नई चीज अलग सी बनाते हैं, पंजीरी बनाई, खीर बनाया, तीन चार चीज उसमें लगा चीनी कम ज्यादा टेस्ट करूं, फिर खैर थोड़ी दिमाग में ये रही कि करूं ना करूं क्योंकि भोग देना है। फिर एक दिमाग कंसेप्ट वही आया कि शबरी भी, फिर सोचा हम कहा शबरी, बस उसी में फिर मैं चुप्पी हो गई। तो आज मेरा भजन भी यही शबरी माँ पे ही है।
हाँ जी राज जी, मैं एक मिनट आपका आंसर दे देता हूँ जो आपने पूछा है।
हाँ जी,
इस तरह की सिचुएशंस में ना बड़ा अच्छा आपका जो आंसर आया ना कि हमें कभी भी शबरी माँ या किसी शुद्ध भक्त को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी, और हमने क्या करना है, आपने कुछ नया भी बनाया तो उसमें क्या होता है सिंपल, आप जितना प्रीमेच्योर लेवल पे रेडी हो गया ना आपका फूड, पहले एक बार भोग लगा लो, फिर उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट करो और उसके बाद टेस्ट कर लो। उसका सोल्यूशन ये होता है, जैसे मान लो खीर बना रहे हो, नॉट श्योर की शुगर ज्यादा है या कम है, वो आपने टेस्ट करनी है, तो जैसी खीर बनी है प्रभु को याद करके पहले भोग लगाओ, फिर उसको मिक्स कर दो, उसके बाद आप ना उसको टेस्ट करके फिर उसमें ऊपर नीचे कर सकते हो, ये सोल्यूशन रहेगा उसका। क्योंकि हमने ना सुना बहुत सारे भक्तों के बारे में बहुत कुछ होता है, बट वो परमहंस होते हैं और हमें वो कॉपी नहीं करना है कभी भी, है ना।
हाँ जी, हाँ नहीं, कई बार तो अलग निकाल के रख देते हैं बाद में, बस वो फिर दिमाग में ही रह गया, मैंने कहा चलो आज वो बात कर ही दूं, संशय रह जाता है मन में। हाँ जी, थैंक यू निखिल जी। तो आज का भजन है मेरा शबरी माँ पे। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम जी आ जाओ। टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरी बेर, राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरी बेर, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कैसे रिझाऊं, अपने राम जी को कैसे रिझाऊं, दीनहीन मोय जान ना कोई भक्ति ना कोई ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। दीनहीन मोय जान ना कोई भक्ति ना कोई ज्ञान, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी के पग पखारूं, अपने राम जी के पग पखारूं, नैन में भरे है नीर, नीर में भरे सुरकरी गीत, राम मेरे आ जाओ। नैन में भरे है नीर, नीर में भरे सुरकरी गीत, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। हरि बोल हरि बोल,
हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। राजी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भजन, बहुत मजा आ गया आपका भजन सुन के। थैंक यू सो मच ये भजन शेयर करने के लिए। निखिल जी, बिफोर आई कंक्लूड, आप कुछ आखिरी थॉट्स देना चाहेंगे? हरी हरि बोल।
हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। नहीं, बहुत आनंद आया, थैंक यू सो मच वरुण जी, एंड सभी के रिव्यूज बहुत प्यारे थे, थैंक यू। बस मैं प्रेयर्स करना चाहूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। वरुण जी,
हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। जिन लोगों को हम मौका नहीं दे पाए रिव्यूज में, प्लीज आप अपने फीलिंग्स को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं, हमारा नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, भगवान खुद बोलते हैं, मैं ही समय हूं, मैं ही काल हूं। वीकेंड का समय है, तो इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप अपने समय को वेस्ट नहीं करेंगे, अपने समय को स्पेंड भी नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने समय को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ और भगवान के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो इन्हीं प्रेयर के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन हो जाए, आज यहाँ कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy to the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Thank you everyone for joining in. Hari Hari Bol.
Golok Express से जुड़ने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस info@golokexpress.org द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर 7018026821 से भी जुड़ सकते हैं। आप हमसे फेसबुक पेज और YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरी हरी बोल।